Hare Krishna.
अंतर्राष्ट्र
कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की अपार कृपा से आहूजा परिवार के ओर से आयोजित इस 7 दिन के श्रीमद् भागवत के सत्संग के 4th दिन में आप सब श्रद्धालु पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। रागनों का चैतन्य दास राजीव और कविता कृष्ण चरण प्रिया, इनके विवाह की 25 साल की गांठ इस भागवत कथा के सत्संग के 7वें दिन पूरी पूर्णाहुति के उपरांत होने वाली है। इस उपलक्ष्य में इतना जीवन भगवान की भक्ति में प्रेम से गुजरा है, आगे भगवान प्रेम और भक्ति में वर्धन करे और आप सब लोगों को कथा कीर्तन के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करें कि आशीष भगवान की आशीर्वाद हो, जीवन उनका मंगलमय हो, परिवार के साथ इस आयोजन को यहाँ पंजाबी बाग मंत्र के भक्तों के सहयोग से घटित किया है। तो कल हमने पहले इस श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज जन्म से भगवान का दर्शन किया, माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन किया, कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त की, उनके मन में एक ऋषि को अपमानित करने का विचार आ नहीं सकता और ऋषि को भी क्रोध आ जाए ये भी संगति बैठती नहीं है। ये सब भगवान की इच्छा से भागवत के अवतार की भूमिका के रूप में हुआ। जैसे हम आगे सुनेंगे, वसुदेव और देवकी भगवान के पिता हैं तो उनको कंस कारागृह में बंद करेगा, उनके बच्चे मारे जाएंगे, ये भी भगवान की योजना से भगवान के अवतार की भूमिका है। सो परीक्षित महाराज 7 दिन में शराब के कारण तक्षक सर्प से डसे जाएंगे, तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, राजपाट का परित्याग करके गंगा जी के तट पे आ गए। सब ऋषि मंडल आएगा, सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वहां आए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव महाराज गुरु को ढूंढने के लिए नहीं गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की करुणा कृपा से और प्रेरणा से सुखदेव महाराज स्वयं ही आके उनको भागवत का संदेश सुनाया। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कृष्ण की कृपा होती है तब गुरु के गुरु का दर्शन होता है, गुरु का आश्रय मिलता है, शरण मिलता है और गुरु की शिक्षा होती है तब कृष्ण की भक्ति का जन्म होता है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न ये पूछा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और सब लोगों का सब समय सब जगह कौन सा ऐसा मंगलमय पुण्य कार्य है जो इसको वो करें जिससे सबका जीवन सफल हो और जिसका मृत्यु बहुत निकट हो, मिर्यमाण हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव महाराज इस प्रश्न से इतने प्रसन्न हुए, मंगलाचरण करना भूल गए और वो कहते हैं वरे यमेश ते प्रश्न, आपका ये प्रश्न अति उत्तम है। क्यों इतने संकट में भी सबका भला चाहते हो, सबका हित चाहते हो। कृतो लोके हितम निरप, राजा लोगों के हित के लिए आपने प्रश्न किया है, लोगों के हित के लिए प्रश्न किया है, सबका भला चाहते हो। आत्मवित समत्व पुंसाम स्रोत व्याधिषु यह परः। इसका उत्तर ये है कि उनको सुनना चाहिए, उनको हरि कथा सुननी चाहिए। ये सारे ही महात्माओं ने निर्णय करके बता दिया है। और फिर पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रस्य। दुनिया वालों के लिए सुनने के लिए 100 बातें, टीवी को सुन लेते हैं, अखबार को पढ़ लेते हैं, मैगजीन को सुन लेते हैं, इधर उधर की कथाएं सुन लेते हैं। निर्णाम संति सहस्रस्य अपश्यताम आत्म तत्व। अरे अपने आत्मा का तो साक्षात्कार करते ही नहीं है, संसार की बातों में सारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, ऐसी बातें सुनते रहते हैं, ऐसा कथा कभी आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं। ग्रहेशु गृह मेधी नाम, वो केवल अपने घर के अंदर उनकी बुद्धि घर गृहस्थी में लगी रहती है और आत्म साक्षात्कार के रास्ते में उनके पास समय नहीं रहता है। इतनी सारी बातें हैं, कितने अखबार सबके घर में आता है, टीवी सबके घर में है, लेकिन भागवत कहते हैं ले जाओ तो लोगों को लगता है नहीं यार, भागवत टीवी से तो सस्ती है, और टीवी में इस दुनिया की खबरें आएंगी और भागवत में भगवान के धाम की खबरें हैं, और भागवत पढ़ने से भगवान के धाम जाएंगे और टीवी देखने से नरक में जाएंगे। लेकिन फिर भी आदमी उसके लिए बहुत लालायत होता है, भाई 10-15 हजार से कम तो टीवी नहीं है ना, हाँ, लेकिन उसको लेने के सबके घर में एक एक नहीं, हर एक कमरे में अलग पड़ी है। लेकिन कहते हैं गीता भागवत लो, नहीं महाराज इसका क्या करना, एक पड़ी है हमारे घर में, एक पड़ी है, खोली कभी नहीं, जैसे लाए थे ऐसे ही पड़ी है। तो यहां सुखदेव महाराज बहुत कटाक्ष में कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। फिर कहते हैं निंद्रया हृयते नक्टम। रात तो उनकी नींद में चली जाती है। बोला नहीं सोते हैं तो क्या करते हैं, व्यवाये न चवा वयः, या तो भोग करते हैं या तो सोते हैं। दिवाचा अर्थे या राजन, और दिन को पैसे के पीछे भागते हैं, पागल की तरह पैसे के पीछे भागते हैं। कुटुंब भरणे नवा, और क्यों मां पैसे के पीछे भागते हैं, बोला कुटुंब का पालन पोषण करना है, रोटी तो रोज 2 ही खाएगा 4 खाएगा कितने खाएगा, सोने की खाता है कि आटे की खाएगा, इतना तो सबको मिल ही जाता है। हाथी को एक मन रोज का भगवान देता है और चिंटी को एक दाना रोज मिलता है, न चिंटी कहीं नौकरी करने जाती है ना हाथी किसी फैक्ट्री में काम करता है। जब उनको भोजन दे रहा है तो हमारे भोजन के लिए भगवान के पास कोई कमी है क्या, बच्चे को जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध पैदा कर देता है, उस भगवान ने सबका व्यवस्था पहले से करके रखा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमको पालन करना पड़ेगा। तो कहते दिन क्या कमाने के पीछे लगते है। एक बार भगवान से एक भक्त मिला, भगवान से पूछा कि संसार में कौन सा सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज है, सबको आश्चर्य में डालने वाली चीज क्या है। तो भगवान हंसते हुए कहा कि पहली आश्चर्य में डालने वाली चीज ये है कि छोटा बच्चा बड़ा होने में खुश होता है, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं। वो 5 साल के बच्चे को कहोगे कि तुम तो बड़े हो गए, हाँ ना मैं अभी बड़ा हो गया सब समझता हूँ, और बूढ़े को कहोगे किसी को 50 वाले को तुम बूढ़े हो रहे, नहीं 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 अभी कहाँ मैं बूढ़ा आ रहा हूँ अभी मैं ठीक हूँ। तो सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य ये कि छोटा बड़ा होना पचाता है और बड़ा बूढ़ा नहीं होना चाहता, बीच में लटके न्यूट्रल गेयर में तो रह नहीं सकता। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि बच्चा जवान होना चाहता है और जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता। बोला दूसरा क्या सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का है, बोला जवानी होती है तो पैसे कमाने के लिए पागल की तरह भागता है, और पैसा आता है ना फिर जवान होने के लिए पैसे को खर्च करता है, पैसा कमा लिया फिर कहता है पैसा खर्च करके जवान बन जाऊं, और जवान बनने के लिए पैसे को खर्च करता है, इतना मेकअप का सामान लेता है, इतना चमकने का प्रयास करता है, और फिर भगवान हंसते कहते हैं मूर्ख की जवानी भी गई पैसा भी गया, जवानी पैसे में चली गई और पैसा जवानी में मेरे को लाने के लिए चला गया, जवानी तो वापस आएगी नहीं, और दोनों बेचारे के पानी में गए। बड़ा आश्चर्य है दुनिया का सबसे बड़ा। और तीसरा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज ने बताया था यक्ष को, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर छन्ति किम आश्चर्य मत परम। दुनिया से कोई ना कोई तो रोज कहीं किसी घर में, किसी पड़ोस में, किसी गली में, किसी कूचे में, किसी शहर में जा ही रहा है इस दुनिया से। बाकी सब समझते हैं कि हम सदा रहने वाले हैं, बस यही जाने वाला था, हमारी बारी कभी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है। और कोई तैयारी भी नहीं करता है जाने की। मानव जन्म ऐसा है जैसे घर में कन्या होती है, लड़की होती है, तो माँ को चिंता होती है कि इसको विदा करनी है, इसके लिए कुछ सामान की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि शरीर से एक दिन इस आत्मा को विदा करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा सामान तैयार किया है, उस वक्त कौन सी चीज साथ जाएगी, कौन सा धन साथ जाएगा, कौन सा भोजन साथ जाएगा। जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा, हरिनाम वहां संग तोषा। जब यहां से जाएंगे कितना लंबा सफर है कुछ मालूम नहीं है, वहां क्या साथ जाएगा, डबल रोटी जाएगी कि सैंडविच जाएगा, कचौरी जाएगी कि पराठा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। तो उसके लिए किसी ने इकट्ठा करने का प्रयास किया है। असली धन नहीं इकट्ठा करते हैं, कच्चे धन के पीछे भागते हैं। जो धन आज नहीं रहेगा उसके पीछे भागते हैं, आज है कल नहीं रहेगा। और जो धन सदा साथ में रहने वाला है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान का धन, भगवान के धाम का है। और ये धन सब जगह साथ चलेगा। उस धन को इकट्ठा करने में कंजूसी करते हैं, आलस करते हैं। और जो धन आज आया है कल चला जाएगा, उसको पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं, जब वो टिकने वाला नहीं। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, रात भोग करने में या सोने में गंवा देते हैं, दिन धन के पीछे पागल बन के घर को कुटुंब को पालन करने के पीछे लगे होते हैं, आत्म तत्व के लिए अंधे हैं। अपने आप को पहचानने का कोई उनका विचार नहीं है। और फिर कहते हैं, देहापत्य कल्त्रादिशो आत्मसैन्येषु असत्स्वापि, जिनके लिए काम कर रहे हैं ना, घर परिवार पुत्र, ये सब सैनिक ऐसे हैं जो मृत्यु से बचा नहीं सकते। ये सैनिक मृत्यु से बचाने वाले नहीं है। देह आपत्य, शरीर, परिवार, पुत्र, आत्म सैन्येषु असत्वापि, ये आत्मा के साथी नहीं है। हम कभी कभी समझाने के लिए कहते हैं कि जिन चीजों को आप अपना मानते हो वो चीजें आपको जानती हैं। आप घर को अपना मानते हो, घर आपको पहचानता है। आप गाड़ी को अपना मानती हो, गाड़ी आपको पहचानती है। आप सोने चांदी को, आभूषणों को अपना मानते हो और कहीं गुम हो जाए तो बुलाता है आपको कि कहाँ चला गया। हाँ, घर एक किसी को बेच के चले जाओ तो घर पीछे से बुलाता है। तो जिन चीज़ों को हमने अपना मान के रखा है वो हमको जानती भी नहीं, और हम कहते हैं हमारी। और आश्चर्य तो ये, घर में रहने वाला काकरोच भी पड़ोस में जाके कहता है मेरा घर है, और कुत्ता भी घर में बंदा आया तो पड़ोस में कहता है ये मेरा घर है। हम भी समझते हैं मेरा है, वो भी समझता है मेरा है। तो ये तो दोनों ही तो एक ही स्तर के ऊपर पशु जैसी बातें कर रहे हैं। और जो जीते सगे संबंधी मित्र बंधु समझते हैं, क्या वो हमको पहचानते हैं क्या? क्या हम आत्मा है, इस नाते से हमको जानते हैं क्या? शरीर का सुख उनको कुछ हमसे मिलता है, कुछ सहयोग मिलता है, इसलिए हमारे साथ चलते हैं। और जब वो नहीं मिलेगा तो हाथ निकाल देंगे। तो हमारे को आत्मा के नाते तो वो भी नहीं जानते हैं ना। तो ये सारे सैनिक जिनके सहारे हम समझते हैं कि भवसागर पार कर जाएंगे, ये तो बेचारे स्वयं डूब जाएंगे तो हमको कहां से तारेंगे। तो इनके इनके सहारे चलने वाले मूर्ख हैं। आत्मसैन्येषु असत्त्वापि तेषां प्रमत्तो निधनम्, उसी नशे में है, प्रमत्त है वो, उसी नशे में इतना प्रमत्त है, उतना उसमें आसक्त है। पश्यम अपि न पश्यति, देखते हुए भी अंधा है, जानता है कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता है। और अब कहते हैं, स सब लोगों को सब समय सब जगह क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देते हैं। तस्मात भारत सर्वात्मा, इसलिए ये भरतवंशी महाराज परीक्षित, सर्वात्मा जो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, जो सबके सुहृद हैं। देखो इस दुनिया में एक तो होता है संबंधी, आप जाओगे तो वो आएगा, एक होता है मित्र, तुम काम आओगे तो तुम्हारे काम आएगा, एक होता है सुहृद, तुम आओ ना आओ, तुम काम आओ ना आओ, लेकिन वो तुम्हारा भला चाहता ही रहेगा, तुम भला करो ना करो वो तुम्हारा भला करेगा, उसको कहते हैं सुहृद। वो तुम्हारे से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है कि मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भला करेगा ही करेगा, उसको सुहृद कहते हैं। संसार में दुनिया में एक सुहृद है माता, जो अपने बच्चे के सुख के लिए अपना सारा सुख भूल देती, भुला देती, रात को जागती है बच्चा सो जाए सुख से। दूसरा सुहृद गुरुदेव होता है, वो हमारे दोषों को न देखकर हमारे को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए कैसे भी योजना बनाते हैं, युक्ति करते हैं। और तीसरा सुहृद भगवान है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हम याद करें न करें, लेकिन उसने कभी हमारा हवा पानी बंद नहीं किया। हवा बंद किया है किसी का? काले का, गोरे का, चोर का, डाकू का किया है? मुफ्त में सबके लिए हवा का प्रबंध करके रखा है, सब सांस ले रहे हैं, सबसे महंगी चीज सबसे मुफ्त में सबको दे रखी है, कितना बड़ा दयालु है, किसी का हवा पानी बंद नहीं करता, इतना बड़ा उदार है। एक बार बीरबल अकबर की बात हो रही थी, बीरबल से अकबर पूछा, तुम्हारे भगवान से राजा, राजा बड़ा के भगवान बड़ा? बोला, महाराज आप हमारे भगवान से बड़े हो। पर ऐसे क्यों कहते हो भाई, कोई भगवान से बड़ा, अल्लाह से बड़ा हो सकता है क्या? बोला, महाराज कोई अपराधी होता है तो आप अपने राज से निकाल सकते हो, लेकिन भगवान ने आज तक किसी अपराधी का हुक्का पानी बंद नहीं किया, वो बड़ा महान है, और तुम कहते समझते हो बड़ा हूं, कहते तू निकाल सकते हो, लेकिन वो नहीं निकालता, वो सभी का पालन पोषण करता है, बड़ा उदार है। भगवान का एक बड़े से बड़ा गुण ये है कि दोष किसी का याद नहीं रखता है और किया हुआ अच्छा काम कभी भूलता नहीं। आपने थोड़ा भी अच्छा किया कभी नहीं भूलेगा, और आपने कोई दोष किया कभी याद नहीं करेगा। इसको कहते हैं सुशील सुभा, शील सुभा इसका नाम है, कि किसी के दोष को याद मत रखो और किसी के किए हुए उपकार को कभी मत भूलो। तो भगवान ऐसा सर्वात्मा है, भगवान अपि विश्व आत्मा, और फिर का भगवान, वो भगवान है, भाग्यवानों का भला करता है। देखो धन होगा तो धनवान कहलाएगा, भाग्यवान नहीं कहलाएगा, विद्या होगा तो विद्यावान कहलाएगा, लेकिन भगवान होगा तो भाग्यवान कहलाएगा। तो भगवान ईश्वरो, भगवान जो सबका नियंता है, सबको सदमार्ग चलाने के लिए संसार में नियम बना रखा है। भगवान के आज्ञा में चलने वाले सूरज ने कभी छुट्टी की है? सातों दिन उगता है कि नहीं? बारह महीना उगता है कि नहीं? सबको प्रकाश देता है, उष्ण देता है, जगाता है, गंदी जगह को पवित्र करता है। अरे भगवान, भगवान कहते हैं ये मेरा भगवत गीता का पहला शिष्य है। और सूर्य को ही भगवान ने प्रकाश दे के विश्व व्यापक गीता के ज्ञान को प्रसिद्ध किया है, कि एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है। अमेरिका का भी एक वही सूर्य है, भारत का भी वही है, रशिया का भी और चाइना का भी सूर्य वही है, सूर्य कोई अलग नहीं है। इसका मतलब एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है, तो ये भगवद गीता पूरे दुनिया के लोगों का आत्म साक्षात्कार करने में, उनको एनलाइटन करने में, उनके हृदय को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने में, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए परिपूर्ण है। ऐसा ईश्वर जिसके नेम में कभी कोई त्रुटि नहीं है, हर एक चीज अपने समय से होती है। हरि ही चार विशेषण दिया, हरि है उसका नाम, बोला हरि के बहुत अर्थ हैं, लेकिन दो अर्थ चेतना महाप्रभु ने मुख्य बताए हैं। भक्तों का दुख ताप संताप संकट हर लेता है, दुख हरे संकट हरे। बोला दूसरा अर्थ क्या है, प्रेम देई मन हरे, और इतना प्रेम देता है कि मन हर लेता है। इसलिए भगवान का एक नाम है मनोहर, और श्री कृष्ण का एक नाम है मुरली मनोहर। मुरली की मधुर धुन से सबका मन हर लेता है। तो ये चार भगवान का विशेषण देके कहते हैं क्या करो, श्रोतव्य सुनो, भगवान की कथा सुनो, कीर्तव्यश्च, और भगवान की कीर्ति गाओ, भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के लीला का कीर्तन करो। च सिमर्तव्यस्, और सिमरण करो, याद करो उसको। बोला लाभ क्या होगा, यदि क्षति अभयम, तुम भय से मुक्त होना चाहते हो। अगर भय है कि नहीं है सबको संसार में, हाँ भय हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे पीछे लगा हुआ है भय। संसार में हर एक आदमी को भय है, पता नहीं ये रहेगी चीज कि नहीं, ये चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, भविष्य का इतना भय होता है। उससे अगर मुक्त होना है तो भगवान का कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का सुमरण करो। ये नवदा भक्ति में तीन अंग, बीच में च कह के दूसरे अंगों का भी वर्णन कर लिया। और फिर कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम, या तो आप सांख्य योग का अभ्यास करो, मतलब शरीर अलग है आत्मा अलग है इसको समझो। स्वधर्म परिनिष्ठाय, अपने स्वधर्म हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक स्वधर्म हमारा होता है, जैसे स्त्री का धर्म अपना है, पुरुष का धर्म अपना है, अध्यापक का धर्म अपना है, और छात्र का धर्म अपना है, पुलिस का धर्म अपना है, डॉक्टर का धर्म अपना है। तो जो जो कार्य कर रहा है वर्ण आश्रम में उसका अपना स्वधर्म है। ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना धर्म है, वैश्य का अपना धर्म है, और एक स्वधर्म सबका एक ही है। आत्मा के नाते हम सबका एक ही स्वधर्म है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और उसका स्मरण करें। शरीर के नाते हमारे धर्म अलग अलग है, लेकिन आत्मा के नाते हम सबका एक ही धर्म है। तो स्वधर्म में परिनिष्ठ हो जाए, शरीर का धर्म तो करे लेकिन आत्मा के धर्म को कभी नहीं भूले। जन्म लाभ है परापुंसाम, तभी आपके मानव जन्म का असली लाभ प्राप्त होगा। अपने धर्म में स्थित हो जाओ। गीता में दोनों धर्मों का वर्णन किया है, आत्म धर्म का वर्णन किया है और शरीर के धर्म का भी वर्णन किया है। और अंते नारायण स्मृति ही, कितना सारा कुछ करे लेकिन अंत में नारायण की याद ना आए तो सब कुछ बेकार है। शास्त्र पढ़े, विधि विधान से जिए, नियम पालन करे लेकिन अंत में भगवान याद नहीं आए तो फिर सब व्यर्थ चला गया। परीक्षा सबको देनी पड़ती है, आप भी स्कूल में गए हो, महीने और साल में परीक्षा होती, अभी 3 महीने में परीक्षा होती है। अगर परीक्षा में आपको स्मृति हुई, याद हुआ तो आप उत्तीर्ण हो जाओगे, और याद नहीं हुआ तो फेल हो जाओगे। एक परीक्षा ऐसी है जो सबको देनी पड़ती है, वो अंत समय की परीक्षा है। जब शरीर से आत्मा निकलती है, प्राण जब कंठ पे आते हैं, उस वक्त एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जिसके भगवान की स्मृति हुई वो पास हो गया, और जिसकी उसको याद नहीं आई वो फेल हो गया। और ये परीक्षा सबको देनी पड़ती, इस परीक्षा का पेपर आउट है। इसका क्या प्रश्न है कि अब अंत समय भगवान नारायण का नाम लेना है, गोविंद का नाम लेना है, कृष्ण राम नाम लेना है, ये बात ओपन है। और इसकी तारीख है तो पहले से ही मुकरर, लेकिन हमको पता नहीं, कभी भी हो सकता है। उस समय भगवान याद आ जाए तो समझो कि हमारे जीवन के सारे कार्य सफल हो गए, और उस वक्त भगवान नहीं याद आए तो समझ लो सब कुछ किया था वो पानी में गया। एक सेकंड की परीक्षा है। सांस है आदम, आदमी को आदमी कहते हैं, आदम मतलब एक बार सांस ले वापस आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं। उस एक सांस में स्मरण हो जाए, श्वास श्वास सिमर गोविंद, मन अंदर की उतरे चिंद, श्वास श्वास सिमर गोविंद, हर श्वास के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। अंतकाल में भगवान कैसे याद आएगा? अभ्यास, यो अभ्यास करेंगे तो, अभ्यास अगर करेंगे तो ये भगवान की स्मृति अंतकाल में आएगी। आठवें अध्याय भगवत गीता में अंतकाले च माम स्मरम, जो अंतकाल में मैं मेरा स्मरण करता है, भगवान ने सीधा कहा मेरा, अंतकाले च माम, माम श्री कृष्ण कहते जो मेरा स्मरण करेगा वो वापस मेरे पास आएगा। अंतमति सोगति, बोला हम समय कितना लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। उदाहरण एक महात्मा दिया करते थे, आप फोटो निकालने कभी जाओ फोटोग्राफर के वहां तो पहले कहेगा बाल ठीक करो, फिर कहेगा जरा मुस्कुराओ, और वो कैमरा के बटन के ऊपर हाथ रखेगा, कहेगा जरा मुस्कुराओ अब फोटो निकाल रहा हूं। आपने मुस्कुराया उस वक्त एक मच्छर नाक में घुस गया और उसने बटन दबा दिया, हमारा फोटो कैसा आएगा? हाँ, और जब वो फोटो निकाल के देगा आप कहेंगे अरे ये क्या कर दिया मेरा, ऐसा थोड़ी फोटो है, उसमें मैं तो बटन दबाया था, तुम्हारा जैसा मुंह था ऐसा आया उसमें, उसने तो कुछ नहीं किया ना। ऐसे एक सेकंड में उस वक्त इतना ही टाइम होता है, उस वक्त अचानक भगवान का नाम निकल गया तो पास हो गए, नहीं निकल गया तो फेल हो गए। इसलिए भक्तों का संग ऐसा अच्छा करना चाहिए कि अंत समय कभी हमको याद ना हो तो भक्त आके हमको याद कराएं। और भगवान भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अंत समय सुखदेव महाराज को भेज दिया है भगवान की कथा सुनाने के लिए, तो भगवान ऐसे भक्तों की सहायता करने के लिए भक्तों को भेज देते हैं। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। और कहते हैं अंत में नारायण ना याद आए और सारे काम ठीक हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, गम बंगला हो, गाड़ी हो, मोटर हो, लेकिन अंत समय भगवान याद ना आए तो फिर सब पानी में गया, कोई लाभ नहीं, परीक्षा में फेल हो गए। तो अब कहते हैं मैंने इस भागवत को सीखा है, वो सारे वेदों के समान है, और वेदव्यास के द्वारा इस भागवत को वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब कहते हैं पहले का उत्तर तो दे दिया कि सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए, अब जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? उसको कहते हैं मैं आपको तो महाराज आपके पास 7 दिन पड़े हैं, मैं आपको कथा बता रहा हूं भगवान की, जो भगवान के समान है। खटवांग महाराज तो 48 मिनट में के 2 घड़ी में 24 48 मिनट में भगवान को प्राप्त किया था, आपके पास तो 7 दिन है, आप चिंता क्यों कर रहे? आपको मैं भागवत सुनाने जा रहा हूं, इदम भागवत नाम पुराणाम ब्रह्म समितम, ये भागवत की पुराण है जिसमें भगवान का नाम ही नाम है, ये नाम है भगवान का इसके अंदर। ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है, जैसे भगवत गीता को कहते हैं ब्रह्म विद्या है, मतलब आत्म तत्व की विद्या है, और ये क्या है? ब्रह्म संहितम अधित्वान द्वाप्रादौ, द्वापुर के आरंभ में मैंने इसका अध्ययन किया। पितृ द्वैपायनाद अहम, वो द्वैपायन ये व्यास का नाम है, व्यास भी एक व्यक्ति को कहते हैं जो वेदों का विस्तार करे, व्यास का मतलब होता है विस्तार, वेदों का विस्तार। और जिस व्यास ने वेदों का विस्तार किया है उसका नाम है कृष्ण द्वापायन, उसका नाम कृष्ण द्वापायन है। ये पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। इसका नाम व्यास देव है, वो उसके पोस्ट का नाम है, लेकिन उसका अपना नाम है कृष्ण। यहां लिखा है द्वैपायनाद, द्वैपायन के द्वारा, द्वैपायनाद द्वैपायन व्यास के द्वारा, जिसने सुखदेव को सिखाया और सुखदेव ने मुझे। मैं तो पहले ही ब्रह्मानंद में था। परिनिष्ठो अपि निर्गुण्य, सुखदेव महाराज पहले ही ब्रह्मानंद में थे। उसको कुछ सीखने उत्तम श्लोक लीलाया, लेकिन भगवान की लीलाओं से इतने आकर्षित हुए, ग्रहित चेतसा राजऋषे, उसका चित्त भगवान की लीलाओं ने आकर्षित कर लिया। ब्रह्म आनंद उनके लिए एक बिंदु हो गया और भगवान की लीला एक सरोवर हो गया, समुन्दर हो गया। तो लीला के समुन्दर ने ब्रह्म आनंद को कम कर दिया। आख्यानम यदा अधित्वान, उसने बैठ के इस भागवत का अध्ययन किया, और फिर कहेंगे उसी तदा हम ते अभिधास्यामी, वही भागवत में आपको सुनाने जा रहा हूं, जो सुखदेव जैसे महात्मा ने व्यास देव से सुना था, जो पहले ब्रह्म आनंद में। इसका मतलब ये है, जिसको पहले ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है वो भी भागवत के लीला से आकर्षित हो जाता है। उसने बैठ के इसका अध्ययन किया है। महापुरुष एक भवान, भगवान कहते हैं मैं, मेरे को, मैं अपन, मैं स्वयं भी उनके पास से सुन के आया हूं। यश्य शरदधाम आसो श्यान मुकंदे मति सती। दो प्रकार की मति होती है। मति, कल आपको मति का अर्थ बताया था, याद है क्या है मति का अर्थ? बुद्धि। दो प्रकार की मति होती है, एक को कहते हैं सती मति। कैसी मति? सती मति। और सती मति कौन सी है? मुकंदे सती मति, जिसकी मति मुक्ति दाता में लगी हुई हो, जो मुक्ति देने वाला है, मुकंद कहते हैं मुक्ति दाता को। और दूसरी मति होती है शरीर के भोग में लगी हुई, उसको कहते हैं पुरंजनी बुद्धि, असती मति। सती मति, असती मति, जिसकी मति भगवान में लगी है। भीष्म पिता, मैंने अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण की, तो ये सती मति कहलाती है। तो कहते हैं मैं उसी भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, और जो आदर से इसको सुनता है उसका मुकुंद भगवान मुक्ति दाता में विश्वास और श्रद्धा बढ़ जाती है। ये कथा आपके हृदय में श्रद्धा को बढ़ाए। श्रद्धा भक्ति की जननी है, श्रद्धा भक्ति की जननी है, आदाओ श्रद्धा। तो श्रद्धा हमारी भगवान में कैसे बढ़ेगी? बोला मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, आपकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में बढ़ेगी। तो मानो परीक्षित ने कहा, देखो आपने तीन तीन काम बता दिए, सुनो भी, कीर्तन भी करो, स्मरण भी करो, इतना नहीं हो पाएगा, कल युग है, कोई एक रास्ता बताओ। तो कहते हैं एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम्, योगी नाम नृप निर्णीतम हरिरनामा कीर्तनम। जो संसार के भोग विलास से परे हैं, ऐसे मुनियों ने निर्णय करके बता दिया है कि केवल एक भगवान के नाम का कीर्तन करो, सब काम अपने आप हो जाएगा। एक कीर्तन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है। प्रमाण क्या है? और यह कीर्तन सबको आकर्षित करता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं कि नहीं, और ये कीर्तन सबको आकर्षित करता है। प्रभुपाद जी महाराज यहां से अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, और एक उद्यान के अंदर बैठ के पेड़ के नीचे खड़ताल से कीर्तन किया। न कोई भारती था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई साधु था उधर, वो भी नवयुवक अंग्रेज हिप्पी थे, लेकिन उस कीर्तन को सुनने से उनके हृदय में श्रद्धा जाग गई, क्योंकि भगवान तो उनके हृदय में भी धन था ना। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कैसे इसको मान लिया, कबूल कर लिया, स्वीकार कैसे कर लिया, अगर नहीं होता तो। प्रभुपाद जी एक दिन जा रहे थे पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन, तो भक्तों को कहने लगे, मैंने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार दो चीजों से किया, पहला कीर्तन किया और दूसरा प्रसाद का वितरण किया, बस और कुछ नहीं, केवल कीर्तन से। फिर एक दिन कहने लगे, पहले पहले हमारे पास प्रसाद वितरण करने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, केवल कीर्तन करते थे। उस एक कीर्तन ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि आज देश विदेशों में लोग भगवान के नाम को गा रहे हैं। हमारे यहां पहले भारत में नहीं हुआ ये, पहले कीर्तन अमेरिका में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ, फिर फ्रांस में और जर्मनी में हुआ, और फिर हमारे पास आया। तो उन लोगों उन देशों में ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कैसे हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन भगवान सबके हृदय में और कीर्तन में इतनी शक्ति है कि नहीं, कीर्तन ने ये अपना प्रभाव दिखाया, ये सबके सामने है कि नहीं। तो कीर्तन सबसे शक्तिशाली साधन है। फिर प्रभुपाद जी कहने लगे, उस समय हमारे पास एक सेब मुश्किल से होता था, एक सेब, और कीर्तन के बाद उसके 20-30 टुकड़े करके सबको इतना इतना प्रसाद देते थे। तो एक भक्त ने लिखा, एक सेब आकाश से गिरा तो न्यूटन ने पृथ्वी के आकर्षण का कानून बनाया, तो विज्ञान चालू हुआ एक सेब से। एक सेब एप्पल, एक एप्पल कंप्यूटर और फोन आया, तब से आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से चलने लगी, यह भी एप्पल का कमाल है। एक एप्पल आओ आदम ने खाया और तब से यह सृष्टि बनी, और एक एप्पल प्रभुपाद ने बांटा जिससे हरे कृष्ण बना। ये सब एप्पल का कमाल है, एप्पल ने कितना काम कर दिया, एक एक एप्पल से इतने काम हुए, सारी दुनिया में एप्पल का चमत्कार देखो। तो कीर्तन कितना शक्तिशाली है, कीर्तन करता क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं ये कीर्तन इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, आत्मा के स्तर का है। इसकी ध्वनि आत्मा में तरंगें पैदा करती है और वहां से खुशी का फुहारा और आनंद का स्रोत खुल जाता है, और उस आनंद का एक बार अनुभूति कर लेते तो ऐसा सुख इस दुनिया में उस जैसा है ही नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण सुख है। ये कीर्तन, आप आत्मा हो शरीर नहीं हो, इसका अनुभव कीर्तन में होता है। आप थोड़ा नृत्य करते हैं कीर्तन में 5-7 मिनट, आपको कैसे लगता है? बहुत आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला है। चित्त कहते हैं चेतना को, चेतना को जो दूषित हो गई है उसको धो के साफ कर देता है। ये कीर्तन चेतना को शुद्ध करता है, चेतना जो दूषित हो गई है उसको शुद्ध करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण कहते हैं आईने को। आईना अगर मिट्टी वाला हो, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई हो तो अपना मुंह नहीं दिखता, तो उसको साफ करना पड़ता है, पोछना पड़ता है। ऐसे हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए दिख नहीं रहे, हृदय में भगवान बैठे हैं दिख नहीं रहे, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। तो कीर्तन उस मिट्टी को साफ करेगा तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा। कृष्ण सर्व आकर्षक है, कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, सबको अपनी ओर खींचने वाला। और जिस चीज के हम बने हैं, भगवान भी उसी चीज का बना हुआ है, मसाला वही है दोनों में। जो जिस चीज की आत्मा बनी हुई है उसी चीज का पूरा भगवान बना हुआ है। हम में और भगवान में अंतर क्या है? हमारा शरीर भौतिक है और हम आध्यात्मिक, हम चेतन आत्मा है, हम आत्मा है और हमारा शरीर है। लेकिन भगवान के आत्मा और शरीर अलग नहीं है, वो पूरे का पूरा ही चेतन है। इसको एक महात्मा उदाहरण देते थे, दिवाली के दिन थे, महात्मा जा रहा था बाहर तो घर में बच्चे झगड़ रहे थे, मैं हाथी खाऊंगा, दूसरे कहता ट्रैक्टर खाऊंगा, नहीं मैं कार खाऊंगा। महात्मा ने कहा ये कौन से बच्चे हैं, नाश्ते में कोई हाथी खाता है, कोई ट्रैक्टर खाता है, कोई घोड़ा खाता है। महात्मा ने दरवाजा खटखटाया, बोला माँ, बोला अभी तक भोग नहीं लगाए महाराज, कुछ देंगे नहीं? बोला नहीं चाहिए, ये तुम्हारे बच्चे दिखाओ, हाथी ट्रैक्टर कौन खाता है सुबह सुबह। बोले महाराज ये चीनी के खिलौने हैं, ये टॉफी है हाथी की शक्ल की है, ये घोड़े की शक्ल की है, ये ट्रैक्टर की शक्ल की है, टॉफी के लिए बच्चे लड़ रहे हैं, तो सारे की सारी टॉफी जो है वो चीनी की बनी हुई है, मिठाई है। तो भगवान पूरे का पूरा ही ऐसे आत्मतः है, आत्मा जैसी हमारी ऐसे पूरा भगवान है। जैसे चुंबक जो होता है वो भी लोहे का बना हुआ होता है, और लोहे का कील भी तो लोहे का कील ही है, तो चुंबक में शक्ति होती है, लोहे के कील अपने कील को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे हम आत्मा है लोहे के कील के समान, और भगवान श्री कृष्ण चुंबक है, चुंबक के समान है, तो वो भी हमारे जैसा, उसमें शक्ति हमको अपने ओर आकर्षित करता है। लेकिन जो कील का टुकड़ा धरती पे गिर जाए, उसके ऊपर बरसात के पानी लग जाए और जंग लग जाए, तो क्या उसको चुंबक के ऊपर रखोगा तो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा ना, क्यों? उसके ऊपर जंग लगा। तो हम संसार में आए हैं तो हमारे ऊपर माया का जंग लगा हुआ है, इसलिए भगवान के नाम में आकर्षण नहीं होता। भगवान की शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जंग लगा है, क्या करना चाहिए? जंग को उतारना चाहिए। जंग कैसे उतरेगा? क्या चाहिए? रेगमाल। रेगमाल अपने आप उतारेगा क्या? रेगमाल और कील को साथ में रखोगा उतरेगा? उतारने वाला चाहिए, उतारने वाला रेगमाल घिसे और जंग उतर जाए तो फिर उतारने वाले की जरूरत नहीं है, अपने आप कील जाके चुंबक को चिपकेगा। तो ये भगवान का नाम रेगमाल का काम करता है, और साधु जो जपाते हैं वो घिसने वाला काम करते हैं, और जैसे हमारा जंग उतरता है हम कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ करना नहीं है, केवल जंग उतारना है, और ये जंग सबके ऊपर कई जन्मों का लगा हुआ है, इसलिए भक्तों के संग में कीर्तन करने से चेतना की शुद्धि हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। तो यहां कहते हैं कीर्तन ही एक सर्वोपरि साधन है जो सबका परम कल्याण कर सकता है। और इसके बाद हमको समझाते हैं कि आपको भगवान को समझना है तो पहले भगवान के विराट रूप का ध्यान करो। ये पूरी सृष्टि भगवान का विराट रूप है, तलवे भगवान का पाताल लोक है, और सर भगवान का ब्रह्म लोक है, और सब कुछ भगवान के विराट शरीर में समाया हुआ है। तो ये पूरे प्रकृति के रूप में भगवान का दर्शन करो। और फिर दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान का दर्शन हृदय में करो, जो ये प्रकृति के अंदर विराट रूप के रूप स्वरूप में भगवान है, वही भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए, उसका ध्यान करो। और फिर कहते हैं देवताओं के पूजा करने जाओगे तो संसार का सुख मिलेगा, लेकिन भगवान को पाना है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर व्यास देव को विचार आया कि मैंने मंगलाचरण नहीं किया, और परीक्षित ने कथा बीच में आती है, ऐसे नारद जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ध्यान में बैठे थे, तो नारद पूछता है मैं समझता हूं दुनिया आप बनाते हैं, ये दुनिया आपकी हथेली पे आमले के फल की तरह पड़ी है, अखरोट जैसे है, तो आप ही तो भगवान है और दुनिया को बनाने वाले, तो आप किसका ध्यान करते हो, तो आपसे बड़ा कोई है क्या? तो फिर सृष्टि कैसे होती? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, जिनको भगवान की माया ने मोहित किया है वो मुझे भगवान कहने की मूर्खता करते हैं। ब्रह्मा जी कहता है मैं भगवान नहीं हूं, नारद जी को कह रहा है, और दुख होता है इस दुनिया में ब्रह्मा के बनाए हुए ये कीड़े मकोड़े देखे जैसे जीव अपने आप को भगवान घोषित करके मूर्खता करते हैं। उनको तो माया ने मोहित किया है, उनको मानने वाला भी माया में मोहित हो गए। भगवान बनता नहीं है, भगवान सदैव होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान नहीं, हम तो भगवान के आदेश का पालन करके जैसे बेल के नाक में रस्सी डली होती है जैसे उसको चलाया जाता है ऐसे सब जैसे भगवान चलाता है ऐसे हम चलते हैं। तो सृष्टि कैसे हुई? तो सुखदेव महाराज कहते हैं सृष्टि से पहले मंगलाचरण तो करना चाहिए। तो बहुत सुंदर सुखदेव महाराज की प्रार्थना है, नमः परस्महि पुरुषाय भूयसे सद उद्भव स्थान निरोध लीलया। नमस्कार करता हूं मैं परस्मयी, मैं नमस्कार करता हूं किसके ऊपर? पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर। तम कहते हैं अंधकार को, माया है अंधकार, उससे जो परे है वो पुरुषोत्तम। तम कहते हैं अंधकार को, तमन, और ऊ का मतलब ऊपर, जो तम अंधकार से ऊपर है, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं। क्या करते हैं भगवान? सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, और फिर इसको समाप्त भी कर लेते हैं। सारे कार्य उनके संकल्प से हो जाते हैं। ग्रहित शक्ति त्रयेयाय देही नाम, ये भगवान इस दुनिया में अपनी शक्ति के द्वारा तीन तीन गुणों से सृष्टि का संचालन चलाते हैं। अंतर बाह्य और अंदर और बाहर, अंदर बाहर, हमारे बाहर भी भगवान है और अंदर भी है। अनुपलक्ष्य वर्तमाने, लेकिन हमको उसको देख नहीं सकते। है भगवान सर्वत्र लेकिन देख नहीं सकते। सब जगह भगवान है कि नहीं, लेकिन दिखता क्यों नहीं? किसी ने कहा कि भगवान सब जगह है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो हमने कहा भाई सब जगह मंदिर है तो सब जगह भगवान है तो मंदिर में नहीं है क्या? मंदिर को छोड़ के सब जगह है क्या? भाई सब जगह है तो मंदिर में भी होना चाहिए ना। फिर हमने उनसे पूछा पानी धरती में सब जगह है कि नहीं? बोला हाँ है। तो तुम्हारे को प्यास लगती है तो क्या करते हो? बोला जहां नल का होता है वहां जाके पीता हूं। भैया नल होगा वहां जाके पीऊंगा ना, पानी सब जगह धरती में है लेकिन प्यास लगेगी तो जहां नल लगा होगा वहीं पिएंगे ना, कुआं तो नहीं खोदेंगे? जब प्यास लगेगी तो कुआं खोदेंगे क्या? बोरिंग करेंगे? नहीं ना। तो ऐसे भगवान सब जगह है लेकिन मंदिर में नल का लगा हुआ है, वहां भगवान को खोल के रखा है, आओ जल्दी जल्दी प्यास लगी है तो बुझा दो। है तो सब जगह लेकिन वहां आपको भक्तों ने प्रकट करके पहले से कुआं बना के रखा है प्यास बुझाने के लिए। तो सर्वत्र भगवान है जरूर लेकिन सबको दिखता नहीं। आप हमारे अपने हृदय में हमको नहीं दिखता है। आप अपनी आंख को दिखा को देख सकते हो क्या? अपनी आंख को नहीं देख सकते? ये दुनिया के लोग इतने मूर्ख है, कहते अरे क्या सत्संग में जाने की जरूरत है, हमारे को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम उनसे पूछते तुम्हारी मर्जी किसके ऊपर चलती है? तुम्हारी मर्जी तुम्हारे अपने बालों के ऊपर चलती है? इनको बोलो काले मत हो करके दिखाओ, तेरे बाल तो तुमसे पकते हैं, उनको तुम रोक नहीं सकते, तेरी मर्जी चलती कहां है? चलती है क्या मर्जी आपकी? फिर ऐसे ही मूर्खता से कहना कि मेरे को जैसे अच्छा लगेगा वैसे करूंगा। भागवत में गीता में लिखे ना, दो लिखा है गीता में, दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक असुरों की और एक देवताई गुण वालों की। बोला दोनों में अंतर कैसे करें? बोला जो शास्त्र के नियमों से चलेगा वो देवता, और जो शास्त्रों के मर्यादा का उल्लंघन करेगा वो राक्षस, वो असुर। तो एक शास्त्र ही प्रमाण है, और गीता में लिखा है गीता शास्त्रम इदम ये पठे प्रियत पुमान विष्णु पदम वा पनोति भय शोकादि वर्जित। ये गीता शास्त्र है, विष्णु पदम वापनोति, भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचा देगा। शास्त्रम इदम, ये अशास्त्र है, तो शास्त्र की मर्यादा में रहे वो देवता गुणों वाला, और जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करे वो बोला। दूसरा, जो सतोगुण की वृत्ति वाला है, जिसका सात्विक आहार है, सात्विक व्यवहार है, वो देवताई गुणों वाला। जो राजसिक और तामसिक, लोभी और आलसी है, वो असुरी प्रकृति वाला। बोला तीसरा, दोनों का विभाजन करने का, विष्णु भक्ता देवता तद विप्रिय असुरा। जो भगवान नारायण के, गोविंद के, विष्णु के भक्त हैं, वो देवता हैं, वो देवी गुणों से संपन्न है। और जो उसके विपरीत और किसी के भी भक्त हैं और विष्णु से ईर्ष्या करते हैं, तो निश्चित रूप से असुर है। तीन प्रमाण शास्त्रों में, इस दुनिया में। और फिर पता कैसे लगे? बोला उसके आहार से पता लग जाएगा क्या खा रहा है। सात्विक आहार खाएगा तो देवी गुणों वाला है, राजसिक और तामसिक खाएगा तो असुरी प्रवृत्ति उसकी और प्रबल हो जाएगी, आहार से पता लग जाता है। तो यहां सुखदेव महाराज आगे कहते हैं, भूयो नमः सद व्रजन सिद्धे सताम। सताम कहते हैं भक्तों को, भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान, मैं आपको पुनः नमस्कार करता हूं। अपने भक्तों का भला करने वाले भगवान को नमस्कार करता हूं। आज हम सुबह मंदिर में कह रहे थे कि भगवान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जो भगवान को मारने के लिए आता है वही मर जाता है। और वो भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी बाल बांका नहीं होगा, तो उस भगवान के पतन के ऊपर विश्वास करना चाहिए ना। तो यहां लिखा है, भगवान जो अपने भक्तों को संकट से मुक्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान को फिर मैं नमस्कार करता हूं। बोला क्या करता है? बोला भक्तों की रक्षा करते हैं। और क्या कहते हैं? सदा व्रजन छिद्दे सताम, जो भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं, और जो अभक्त हैं वो समझते हैं कि हमारे को भगवान नाश कर देंगे, उनको डर लगता है। ये भगवत गीता का तो प्रसिद्ध श्लोक सबको याद होगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान को दुष्टों को नाश करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। दुष्टों को नाश करने के लिए एक भूकंप हो जाए सब मर जाएंगे, एक वो कोरोना वायरस आए तो हजारों लाखों लोग एकदम मर जाएंगे। तो भगवान को कोरोना वायरस बनाया तो भगवान नहीं होगा ना, तो फिर भगवान को आके मारने की जरूरत है क्या किसी को? भक्त प्रेम से पुकारते हैं इसलिए भगवान आ जाता है, मारने के लिए आने के लिए जरूरत नहीं है, तारने के लिए आता है। जब आता है तो असुर अपने आप अपने कर्मों के कारण मर जाते हैं, भगवान को मारने का प्रयास नहीं करना। एक बार, बहुत पुरानी बात हो गई अभी, भगवान विष्णु जब भोजन करते हैं उसके बाद उनको पान चाहिए, पान चबाते हैं, मुखवास कहते हैं। पता नहीं मुखवास पंजाब में नहीं चलता है, गुजरात में मुखवास बहुत चलता है। मुखवास का मतलब खाने के बाद सौंफ आदि कुछ खाना चाहिए। तो भगवान विष्णु भोजन करके फिर कहते हैं पान लाओ, और जो सामने खड़ा होता है उसको कहते हैं जा पान लिया। तो उस दिन यमराज आया हुआ था कोई काम से मिलने के लिए, भगवान भोजन करके कहा जा पान लिया, तो वो समझा नहीं, गया सुनामी से पूरे जापान को उठा के लाया। भगवान ने कहा ये क्या किया, ये क्या किया? बोला आपने कहा जा पान ला, यही तो जापान है। तो इतना सारा शक्तिशाली देश जापान भगवान के पान के बराबर भी नहीं है, और उसको यमराज उखाड़ के लेके आ गया। तो भगवान को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं। एक बार अकबर से बीरबल ने पूछा था, बीरबल ने कहा कि महाराज छुट्टी दे, रामनामी आ रही है, अभी आने वाली है रामनामी, 2 अप्रैल को भगवान राम का जन्मदिन आ रहा है। वापस आया मई में, फिर आया कि नरसिंह देव का जन्मदिन है, छुट्टी दो। फिर आया, अब तो जन्माष्टमी आ रही है, छुट्टी दो। वो शहनशाह कहने लगा, तुम्हारे भगवान को कोई काम है, हर महीने खड़ा है, क्या उसके पास कोई दूत नहीं है? भेज दे संदेश, वाहिब को भेज दे, अपना संदेश भेज दे। बीरबल ने कहा, महाराज मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो मेरे को छुट्टी दो। बोला, प्रमाण करके दिखाओ, भगवान को क्या आने की जरूरत है, अपने संदेश वाहिब को भेज दे ना, पैगाम भेज दे। एक महीने के बाद जब वापस बीरबल आया, तो शहनशाह अकबर के बच्चे का साक्षात मूर्ति बना के आया, मोम की, बहुत सुंदर, और छुपा के लाया। और जो मासी बच्चे का देखभाल करती थी आया, उसको कहा, ये 100 मुद्रा ले लो चांदी की। जब महाराज अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हो, सारे संतरी मंत्री और नवरत्न बैठे हों, तब इस मूर्ति वाले बच्चे को उठा के गोद में आना, और जो सभा के बीच में वो फुहारा है जल का, उधर खड़ी रहना, जब महाराज की नजर बच्चे के ऊपर पड़े तब बच्चे को पानी में फेंक देना। उस माता ने ऐसे ही किया, बच्चा पानी में गिरा, शहनशाह अकबर अपने सिंहासन से उठा, अपने मुकुट का ध्यान नहीं, अपनी चादर का ध्यान नहीं, भागते हुए पानी में कूदा और बच्चे को ऐसे उठा के बाहर निकाला। देखा कि ये तो मूर्ति है, अरे बीरबल ये क्या है? बोला, महाराज पानी में क्यों कूद गए? बोला, मैंने समझा मेरा बच्चा है। बोला, इतना छोटा बच्चा पानी में गिरा, सेनापति को बोल दिया होता, मंत्री को बोल दिया होता, कोई भी उठा लेता ना। बोला, नहीं नहीं, बेटे को देखा तो मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, मैं स्वयं कूद पड़ा। बोला, भगवान आपके प्रश्न का महाराज उत्तर ये है, जब भक्त को संकट में देखता है तो भगवान ऊपर से कूद के आता है, उसको उस वक्त कोई संदेश वायक नजर नहीं आता, तब तो वो स्वयं कूद के नीचे आ जाता है। आपको बच्चे के लिए इतना भागना पड़ गया, क्या जरूरत थी? किसी को बोलते निकाल देता बच्चा ना। बोला, नहीं, मेरे बहुत प्राण से प्यारा था, उसको कैसे मैं भूल सका, उसको मैं देखा और मैं उसको भूल नहीं पाया। तो ये जो भगवान है, ये बहुत बड़े दयालु है। अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, आगे श्लोक सारे नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ना है, आप भी श्लोक का पाठ करें, बड़ा अच्छा है। यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यत ईक्षणम, यत वंदनम, यत श्रवणम, यद अहरणम, लोकस्य सदयो विधनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्रा सर्वशे नमो नमः। कहते हैं, जिनका कीर्तन करने से, जिनका सुमरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनको वंदना करने से, और जिसकी कथा सुनने से, और जिसका पूजा करने से। अर्णम का मतलब पूजा। इतने काम करने से होता क्या है? लोकस्य, सबका, जो ये काम करेगा, काला है या गोरा है, बूढ़ा है या बच्चा है, स्त्री है या पुरुष है, देसी है या विदेशी है, जो ये काम करेगा, सदयो, एकदम, सदयो का मतलब अभी का अभी, तत्काल। विधनोति, विधनोति का मतलब विशेष धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, धुनोती नहीं, विधनोती, विधनोती का मतलब दोबारा फिर कचरा आएगा ही नहीं, वी आगे लगाने का मतलब है विशेष, विशेष विधनोती कलमशम, जितने कलमश है, कलमश, वैसे कलमश कहते हैं काले दाग को, काला दाग, कलम, कलमश है, जितना काला दाग है सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए तस्मई, इसलिए सुभद्र, सु और भद्र, भद्र कहते हैं, भद्र किसको कहते हैं? ऑस्पिशियस, भद्र का मतलब है मंगलमय, और उसके आगे सु लगा दो तो महामंगलमय, तत्काल सबका महामंगल हो जाएगा और सबका कलमश नाश हो जाएगा, कली कलमश नाश नम। और शर्वसे, शर्वसे का मतलब उसका श्रवण करने से, शर्व से नमो नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये सुखदेव महाराज की प्रार्थना है, कितना सरल प्रार्थना है, ये शब्द तत्काल आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और कलमश नाश हो जाएंगे और आपका जीवन में भद्र हो जाएगा। अब कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमा नविंदन्ति यदार्पणम् तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। आप कितनी भी तपस्या करो, कितना भी दान दो, कितना भी यश का कार्य करो, कितना भी मंत्र उच्चारण करो, लेकिन अगर भगवान को अर्पण नहीं करते हैं तो कुछ फल नहीं। भगवान को अर्पण करने के बगैर क्षेमाय न विंदति कोई लाभ नहीं होगा। विना यद अर्पणम, भगवान को अर्पण करने के बगैर उसका कोई मतलब नहीं, कोई मत। सुखदेव महाराज कहते हैं कोई भी काम करो, दान करो, पुण्य करो, तप करो, जप करो, मंत्र जपो, लेकिन भगवत अर्पण नहीं है अगर, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए एक शब्द आज याद करके जाओ, कोई भी काम करो तो कहो कृष्ण अर्पणम अस्तु, भगवान कृष्ण मैंने आपको अर्पण किया। इतना कहने में खर्चा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम आदत कहने की पड़ जाएगी, कृष्ण अर्पणम अस्तु। पूरा दिन पूरा हो जाए, शाम को काम करके आओ, बोला जो काम आज किया भगवान श्री कृष्ण हम आपको अर्पण करते हैं। कैसा काम? वो भगवत गीता में शुभा शुभ फले रेवम, शुभ हो या अशुभ हो, अर्पण भगवान को करो तो पवित्र हो जाएगा। गंगा जी के अंदर गंदे नाले जाते हैं तो गंगा जी अपवित्र होती है कि नाला पवित्र होता है? नाला पवित्र हो जाता है। ये भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, यत करोसि यद स्नासि यद जवोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। ये भगवान का आदेश है, जो खाते हो, जो करते हो, जो देते हो, जो लेते हो, मुझे अर्पण करके करते रहो। मद अर्पणम एक शब्द याद कर लो, कृष्ण अर्पणम, कृष्ण अर्पणम, कृष्ण अर्पणम, भगवान को अर्पण किया, भगवान को अर्पण किया। तो नहीं करेगा तो कोई लाभ नहीं है, कुछ भी है किसी काम का नहीं है। अब एक श्लोक और कहते हैं, कीर्त होणांद्र पुलिंड पुल काश आबिर शंभ यवना खसाद्य ये अन्य च पाप यद अपाश्रिया श्रिया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। अब इस श्लोक में बताया है कि नीच से नीच, पापी तापी यवन खस, खस कहते हैं ये जो मंगोल हैं और ये चाइनीज है जिनको मूछ दाढ़ी नहीं आती, इसको खस कहते हैं। और ऐसे लोग भी किसी भगवान के भक्त की कृपा हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए ऐसे शक्तिशाली भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। ये प्रभुपाद जी ऐसे एक महात्मा है जिन्होंने इनसे भी गिरे हुए, गुजरे हुए सब पापों में लिप्त लोगों का उद्धार करके दिखाया कि नहीं। एक महात्मा जंगल में रहते थे, किरात, या किरात पहले शब्द लिखा है, किरात, किरात में शिकारी। एक किरात जंगल में महात्मा को देखा तो कहा साधु को कुछ तो अर्पण करना चाहिए। और काम क्या करना आता था? पशु मारना आता था। एक हिरण को मारा, कंधे पे उठाया, बोला महाराज आपको ये भेंट करूंगा। महाराज ने कहा पशु हत्या करके आए, जाओ जाओ, मैं पशु नहीं खाता। बोला पशु नहीं खाता फिर क्या खाता, जंगल में क्या करेगा? तो महाराज ने कहा इसको क्या बताऊं कि मैं पशु नहीं खाता हूं, हम तो फलाहार करते हैं, लेकिन ये मूर्ख समझेगा नहीं। बोला फिर महाराज, बोला मैं हमारे को काला मृग का शिकार करना है, हम इसलिए तपस्या कर रहे हैं। बोला काला मृग कैसा है? बोला सांवला है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। अरे महाराज ये तो मैं आपको कल पकड़ के लाऊंगा, इस जंगल में होगा तो पकड़ लूंगा। वो चला गया, दो दिन तीन दिन जंगल में बैठा, उसको काला मृग मिले नहीं। उसने बोला नहीं, संत को वचन दे के आया हूं, मेरे को काला मृग तो चाहिए। भगवान ने कहा इतना इसका अटल विश्वास है, संत ने इसके ऊपर कृपा कर दी लगता है। वो भगवान वहां प्रकट हुए, इसने बोला यही है, उसको पकड़ा जाल में डाला और भगवान चुपचाप करके जाल में बैठ गए, ये कंधे के ऊपर उठाया। फिर बोला महाराज 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 कुटिया का दरवाजा खोलो। इसने बोला फिर किसी पशु को मार के लाया होगा। बोला क्या आया? बोला नहीं, काला मृग मिल गया, काला मृग लाया महाराज। बोला किस किसी को मार के आया? बाहर आके महाराज देखे तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे बोला किरात जैसे पशु के हत्यारे को संत का संग मिला तो इतना बड़ा लाभ हो गया। एक चोर था, चोरों में ये कहावत है कि सत्संग में नहीं जाना चाहिए, उनका अपना नेम है सत्संग, और जाओ भी अचानक किसी कारण जाना पड़े तो कान बंद करना, कहीं महात्मा की बात गले न पड़ जाए। ये चोरों का अपना कानून होता है। तो कहीं से चोर चोरी करके भाग रहे थे किसी सत्संग में, अचानक भागे तो वहां सत्संग हो रहा था, तो सबने कानों के ऊपर हाथ दे दिया, एक के पांव में कांटा लगा, पांव में कांटा निकाले तो कान से हाथ नहीं हुआ। और उस वक्त महात्मा ने कहा देवता अगर धरती पे आते हैं तो ना उसके चरण धरती पे लगते हैं ना उसकी छाया होती है। इतना सुना फिर कान बंद कर दिया। आगे पुलिस ने पकड़ने के लिए एक को देवी बना दी और देवी नृत्य कर रही है, तो चोर देवी के बहुत पुजारी थे, दिखा देवी ने कृपा करी आज दर्शन दे रही है, और सब चोर खड़े हो गए। और इसने सुना था सत्संग में, बोला इसकी न छाया पड़ रही है न इसके पांव पड़ रहे, ये देवता नहीं है, महाराज का सत्संग था। वो भाग गया, वो भाग गया, बाकी सब पकड़े गए क्योंकि वो तो सरकार थी ना। और इसने कहा एक संत की बात सुनी, चोरी से बच गया, पकड़ने से बच गया पुरस्कार, तो अब तो महाराज के पास जाना चाहिए। महाराज मैं आपके शरण में हूं, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा, बाकी आप जो कहोगे वो करूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा। बोला सच बोलना बस, और कहीं मंदिर हो तो आरती होती हो तो चुप करके खड़े रहना। हाँ महाराज ये कोई मुश्किल नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। अब राजा के घर में चोरी करने जा रहे हैं और वेश सेनापति का बना के जा रहा है, सेनापति की ड्रेस पहनी है, कमांडर के अंदर गया, बोलो कौन हो? बोला महाराज ने कहा झूठ नहीं, बोला चोर। तो उसने बोला सेनापति आ रहा है ऐसे हम पूछ रहे हैं। तो उसने बोला न सर 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 जाओ जाओ भाई चोर। उसने कहा मैं चोर हूं, झूठ तो बोला ही नहीं। वो अंदर गया, चोरी की सामान उठाया और घोड़ा लेके सेनापति, तो वो सैनिक के घोड़े के ऊपर चढ़ के रहा, राजा के घोड़े के ऊपर चढ़ रहा है, कौन है? बोला से चोर। राजा का घोड़ा कोई चोर थोड़ी ले जाएगा, तो सेनापति को किसी काम से बोला होगा, वो राजा का घोड़ा भी चुरा गया, सामान भी ले गए। झूठ नहीं बोलना, संत ने कह दिया झूठ नहीं बोलना। अब ऐसी स्थिति में गया तो एक मंदिर के बाहर घोड़ा बांधा और मंदिर में गया तो पानी पिया, तब तक आरती हो रही थी। बोला महाराज ने कहा आरती में खड़े रहना, आरती में खड़ा हो गया। तब तक राजा के लोग पीछे आए, देखा बाहर घोड़ा खड़ा है, लेकिन उनको घोड़ा रंग बदला हुआ नजर आ रहा है। तो घोड़ा तो वैसा, ये रंग कैसे बदल गया? थोड़ी देर के बाद इसको अंदर देखा, इसको तो पहचान देते, ये तो मशहूर चोर है। पकड़ा इसको, लाए राजा के पास, बोला चोर है? बोला हाँ, चोरी कर रहे थे। हाँ मैंने कहा था, आपने संतरी ने पूछा कौन हो, मैंने कहा चोर, आपके सामने मैंने चोर बोला, इन्हें पकड़ा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोला। राजा ने कहा इतने सारे मेरे राज में चोर है, कोई पकड़ नहीं पाता, इसको ही मंत्री बना देता हूँ, और खास करके चोरों को पकड़ने का मंत्री, वही सब चोरों को जानता है, अपने आप पकड़ के ले आएगा। राजा ने कहा अब तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे को मंत्री कर बना देता हूँ, और तुम ये अब हमारे हमारे देश में। अब एक संत के वचन सुनने से चोर मंत्री बन गया और बाकी चोरों को ही सुधार दिया। तो ऐसे ऐसे कितने महात्माओं के संग से सुधर गए, ये श्लोक इस बात का प्रमाण है। और प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे लोगों से, एक रशियन हमको कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा माफिया वाला था, चोर में से पीछे पड़े, मैं भागते भागते इस्कान के मंदिर में चला गया, बाहर धोती टंगी हुई थी, कुर्ता टंगा हुआ था, मैंने तब बस जैसे ऐसे जैसे मैं देखा वो पहन के बैठे, ऐसे पहना और माला में कुछ भी नहीं था, झोली पड़ी थी उसमें हाथ डाला ऐसे बैठा था। वो आए पुलिस वाले आए, पूछा चोर आया देखा, कोई चोर देखा? तो बोला यहाँ तो सब भक्त है, तो हमको पहचाना नहीं, चले गए। हमने कहा केवल झूठ मूठ के कपड़े पहने बिना माला की झोली के अंदर हाथ डालने से पुलिस से बच गया, सच बच माला जपूंगा तो यमराज से बच जाऊंगा ना। वो भक्त बन गया। उसने अपनी कथा बताई, अपने जीवन की कथा बताई कि ऐसे में भक्त बन गया। काले अफ्रीका के चोरी करने के लिए मंदिर में आए, पर्दा मंदिर का बंद था, बंदूक सबके कनपट्टी पे रख दी, कोई हिलेगा नहीं, इसके पीछे क्या है, सब उठाना है हमको, सब निकालो, घड़ी निकालो, ये निकालो, सब निकाला, पर्दा हटाओ। पर्दा हटाया, सांवला कृष्ण काला गोरी राधा को देख के नाचने लगे, गोरी के साथ काले की शादी। बोला कौन है? बोला ये हमारा भगवान है। बोला काले को भगवान मानते हो? इसके साथ गोरी की शादी हो गई? बोला हाँ। अरे बोला आप हमारे मित्र हो, आपसे क्या लूटना है, ले लो अपना माल वापस, यहां जो काले को मान देते हैं उससे हम दुश्मनी नहीं करते। वो चोर चोरी छोड़ के चले गए, सब सामान वापस दे के चले गए। बोला ब्लैक मेरी व्हाइट, काले ने गोरे से शादी किया। तो भगवान के चमत्कार, ऐसे चोरों का भी मन बदल जाता है। सच्ची कहानी बता रहे थे अभी, किसी घर में चोरी करने के लिए कोई चोर आया, माला की थैली टांगी हुई देखी, सब सामान छोड़ के चला गया। जाते हुए लिख के गया कि मैं चोर था, आया था चोरी करने, लेकिन मैं मंदिर के प्रसाद को रोज खा के आता हूँ, हमें थैली देखी मैंने समझा कि आप मंदिर के भक्त हो, इसलिए आपका रोज प्रसाद मुफ्त का खिचड़ी खाता हूँ, आपके घर की चोरी नहीं करूँगा। ये सचमुच ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में घटनाएं जागती जीती नजर आती हैं। ये संघ से इतना बड़ा लाभ होता है, तो ऐसे सब भी पवित्र हो सकते हैं। एक और बहुत सुंदर श्लोक है, श्री है पति यज्ञपति प्रजापति धियानपति लोकपति धरापति पति गतिश च अंधक वृष्णी सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति। भागवत के श्लोक का पाठ करने कितना भाग्य की बात है। ये श्लोक अर्थ ना आए तो भी पवित्र करने वाले, जैसे दवाई का पता नहीं हो लेकिन खाओगे तो ठीक हो जाओगे कि नहीं, ऐसे ये हृदय पवित्र के। कहते श्रीय पति, श्रीय है, श्रीय वैसे श्रीय का मतलब जिसके पास वैभव है उसका, भगवान तो लक्ष्मीपति है। यज्ञपति भगवान यज्ञपति, प्रजापति सारी प्रजा उसने पैदा की है, धियानपति बुद्धि का स्वामी है, लोकपति सारे लोक का स्वामी है, जगन्नाथ है, धरापति पृथ्वी का पति है, पतिर गति ये पति सबको गति दे, च अंधक और वृष्णि ये है यादवों के कुल, भगवान श्री कृष्ण। अब देखो सीधा श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहा है, और कोई अवतार अंधक पति नहीं है, अंधक भोज वृष्णि मधु ये सब यदुवंशियों के अलग अलग नाम है। सात्वताम भक्तों के पति, प्रसीदतम हमसे प्रसन्न हो जाओ, हमारे ऊपर कृपा करो, भगवान सात्वताम सताम पति हे भक्तों के पति। तो सबके पति भगवान है, जो कोई है वो सबका पति भगवान है, जगत का नाथ है। वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं सुखदेव महाराज, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। अब हमारे को ये भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनानी है, आप कृपा करें हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। इस 5-7 दिन ये केवल 13 से 20 श्लोक 25 हैं इनके ऊपर कथा होती है। कभी कथा करें तो इतना टाइम लगता है। अब कथा को यहाँ अच्छी सी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद को सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन किया और फिर कहा कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ने मुझे पैदा कैसे किया। बोला गर्भ सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पेट में प्रलय के समय सब जीव चले जाते हैं उनके कर्मों के साथ। और कितना भगवान बड़ा है, कितना पेट है, ये पूरा विराट रूप उसका स्वरूप है। एक मंदिर है त्रिवंतपुरम में, त्रिवेंडम में, अनंत पद्मनाभ, किसी ने देखा है? अनंत पद्मनाभ का मंदिर है, उसका दर्शन तीन दरवाजे से होता है। एक दरवाजे से चरण का दर्शन, एक दरवाजे से मुख का दर्शन, बीच वाले दरवाजे से नाभि दिखती है और नाभि से एक पतला सा कमल का डंडा, उसके ऊपर कमल का फूल, उसके ऊपर ब्रह्मा। तो भगवान कितना है? बोले जितना ये सृष्टि है, जितना ये ब्रह्मांड है, उतना लंबा भगवान है। एक छोर में सर है, दूसरे छोर में चरण है और बीच में पेट उनका है, उसमें सारे जीव हैं। जब सृष्टि करनी होती है तो नाभि की जगह नीले रंग की हो जाती है, फिर वहां से एक कमल का डंडा निकलता है। वो डंडे के अंदर 14 लोक होते हैं, 14 लोक, पाताल लोक से लेके पाताल सूतल प्रदा तलातल महातल करके भूर भुव स्व तप लोक जन लोक महर लोक और सत्य लोक, ऐसे 14 लोक होते हैं। और ऊपर एक कमल का फूल, और कमल का फूल इतना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा कमल का फूल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, पहले जीव, पहले पैदा। और ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं कि मैं कहां से पैदा हुआ, और ऊपर से नीचे तक आते हैं, पानी में ढूंढते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, केवल दो शब्द सुनाई देते हैं, तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। ये धरती तपस्या के लिए, मानव जन्म तपस्या के लिए। ब्रह्मा जी ने पहले शब्द सुने, तपस्या करो। और ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक गोपाल मंत्र का सरस्वती से लेकर 18 अक्षर का जप किया। फिर भगवान साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे दर्शन दिया, मेरे से हाथ मिलाया, कर स्पर्श कर स्पर्श, मेरे हाथ को हाथ मिलाया। और भगवान ने कहा मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं विज्ञान दूंगा, मैं उसके रहस्य उसके अंग सब सुनाता हूं, और 4 श्लोकों में मेरे को भागवत दी। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ने मुझे 4 श्लोकों में भागवत दी। 1 श्लोक में भगवान ने अपना संबंध ज्ञान बताया कि मुझसे पहले कुछ नहीं था, सब कुछ मुझसे निकला है, और सब कुछ नहीं रहेगा तो भी मैं रहूंगा, मैं अनादि हूं, सब कुछ मुझसे निकला है, सब कुछ मुझ में समा जाएगा। फिर मुझसे अलावा जो कुछ आपको दिखता है ये माया है, मेरे से अलावा आपको जो कुछ भी दिखता है ये सब माया है, भगवान के अलावा कुछ भी दिखता है वो माया है। फिर भगवान ने कहा मुझे पाने के लिए आपको मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, अभिधेय बताया। और फिर भगवान की प्राप्ति प्रयोजन ये बताया। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं ये आपको बता रहा हूं नारद, आप इसका विस्तार करो, विपुलीकरण करो, आप इस भागवत का विस्तार करो। फिर लिखा है भविष्य में जो भी भागवत की कथा और सत्संग करे उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सुनने वालों के हृदय में भगवत भक्ति को जागृत करें। बस ये श्लोक लिखा है, मैं ढूंढ के निकालूं और पढ़ूं, इतना समय नहीं है आज। नारद जी कहते हैं कि आप इसका विस्तार करो, प्रचार करो, और भविष्य में प्रचार करने वालों को प्रेरणा और आदेश दो कि केवल सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत करें। और फिर 10 अध्याय का छोटा स्कंद है, भगवान को प्राप्त करने का साधन श्रवण है और कीर्तन है। और दसवें अध्याय में भागवत में दस विषय हैं और भागवत सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो कौन से दस विषय भागवत में, इसका नाम हम आपको बताते हैं और समझा देते हैं थोड़े में क्या है। सर्ग विसर्ग एक ही श्लोक में सब है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतरा ईशानो कथा निरोध मुक्ति चाश्चर्य, ये दस हो गए। पहला विषय है सर्ग। इसका मतलब क्या है? भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि, वो सृष्टि होती है सामान सब भगवान देते हैं। दूसरा विषय क्या है? विसर्ग, विशेष सर्ग। ये ब्रह्मा जी आकृतियां बनाते हैं, प्रकृतियां बनाते हैं, संस्कृतियां बनाते हैं, ये रूप बनाते हैं ब्रह्मा जी। तो सर्ग का मतलब क्या कहा बताया? विष्णु की सृष्टि। भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, क्या करते हैं? जीवात्मा भगवान देते हैं, जीवात्मों के कर्म का चिट्ठा छोटी सी पेन ड्राइव में डाल के दे देते हैं। फिर जिससे शरीर बनता है वो सारा सामान देते हैं, पांच भूत देते हैं, ये सब भगवान ने दिया। और ब्रह्मा जी ने जीव को उसके कर्मों के अनुसार शरीर दिए, उसको कहते हैं विसर्ग। तो स्वर्ग भगवान की सृष्टि और विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मानो ब्रह्मा जी के पास आधुनिक भाषा में एक बड़ा कंप्यूटर है, एक जीव आत्मा को अंदर डालते हैं, फिर उसके कर्मों को डालते हैं। तो अंदर आ जाता है कि ये बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा दानी था, बड़ा दयालु था, बड़ा सेवाधारी था, बड़ा देवता बनने जैसा है, इसके तो कर्म देवता बनने के। तो अंदर पांच तत्व को सामान, शरीर बनाने का सामान अंदर डालता है और द नाम का बटन दबाता है, देवता बाहर बन के निकल आता है। बस कुछ नहीं करना है, उसको जीवात्मा मिली, उसके कर्म मिले और सामान मिला। एक दूसरे जीव का अंदर जीवात्मा को डाला, उसके कर्म का चिट्ठा डाला। गधे की तरह सुबह से शाम तक मजूरी करता था, कभी न सत्संग में गया न कथा में गया, केवल गधा मजूरी करके भोग किया। ये मानव जन्म बेकार गंवा दिया, गधा बनना चाहिए। मसाला अंदर वही डाला और गदबाया और गधा बन के बाहर निकल आया। तो ब्रह्मा जी से ने ऐसे 84 जूनियां बना दी, 84 लाख जूनियां बना दी। तो ब्रह्मा जी विशेष सृष्टि करते हैं। आपको इसको सरल भाषा में समझना हो तो देखो, घर में कभी कोई भोजन बनाना होता है तो घर का मालिक आटा ला के देता है, चावल ला के देता है, दाल ला के देता है, घी ला के देता है, दही ला के देता है, दूध ला के देता है, चीनी देता है, सामान तो मालिक ने दिया। और रसोईया क्या करेगा? चावल बनाएगा, दाल बनाएगा, कढ़ी बनाएगा और खीर बनाएगा। तो चीज़ों का नाम तो रसोईया बनाता है लेकिन माल तो मालिक देता है ना। तो भगवान देता है सामान और ब्रह्मा जी रसोईये की तरह अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं विसर्ग। उसके बाद है स्थान। स्थान का मतलब है ये सृष्टि कहाँ होती है। स्थान अथवा वैकुंठ विजय, दूसरा उसके लिए शब्द है वैकुंठ विजय। भूगोल खगोल, इसमें आता है भूगोल खगोल, ये सृष्टि भगवान कहाँ करते हैं, संकल्प से भगवान की सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि का सारा कर्म कैसे कहाँ करते हैं। तो ये जो तारा मंडल है, खगोल है, भूगोल है, ये सब आता है स्थिति लीला में। स्थिति के बाद है भगवान अगर संसार की सृष्टि करे तो उसका पोषण भी करना चाहिए ना, तो पालन पोषण करता है उसको कहते हैं पोषण। तो जीव को अगर भगवान ने बनाया है तो रोग होगा तो उसका चिकित्सा करेगा, और ठीक है तो उसका वर्धन करने के लिए पोषण का पोषक पदार्थ देगा। जैसे माली बगीचा लगाता है तो खाद भी देता है, कटाई भी करता है, छांटी भी करता है, पानी भी देता है, ऐसे भगवान इस सृष्टि का पोषण करते हैं। पोषण के बाद है ऊती। ऊती शब्द का मतलब है कपड़ा बुनना। कपड़े बुनते हैं ना तो कुछ धागे ऐसे वो लगाते हैं, कुछ उसमें आड़े और कुछ टेढ़े, उनको मिलाते हैं, कपड़े बनते हैं। ऐसे प्रकृति के तीन गुण हैं, वो तीन गुण तीनों से तीन गुण तीनों से मिलाएंगे नौ हो जाएंगे, नौ फिर नौ से मिलाएंगे 81 हो जाएंगे, और वो आपस में मिलाएंगे ऐसे कितने गुणों के, तीन गुणों के प्रभाव के कारण और स्वभाव के कारण बहुत से दुनिया में मजहब है। तीन गुणों के प्रकृति के अनुसार लोगों का जन्म है, सतोगुणी लोग, तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग। तो ये जितने लोग तीन प्रकार की लोगों की वासनाएं होती है, असुरी वासनाएं, देवी वासनाएं, मानव जैसी वासनाएं, ये कैसे हमारे अंदर वासना का बात अर्थ आता है आपको? वासना किसको कहते हैं मालूम है? वास शब्द का अर्थ है, जैसे ये फूल है गुलाब का, जहां रखा था वहां से फूल तो उठा लो लेकिन वहां खुशबू पड़ी है, उसको कहेंगे वास। ऐसे आपने कहीं रसगुल्ला खाया उसको 15 दिन हो गए, आप घर में बैठे आपको वो रसगुल्ला याद आया तो आपके दिमाग में उसका इंप्रेशन याद आ जाएगा, ये वास हो गई। तो ऐसे हमारे कई कर्मों की वासनाएं, इंप्रेशन, अंग्रेजी में कहेंगे इंप्रेशन, वो हमारे माइंड में होते हैं, और वो कर्मों की वासनाएं हमारा स्वभाव बनाती हैं। असुरी स्वभाव बनता है, देवताओं जैसा स्वभाव, या देवता ही बनते हैं। तो ऐसे जिसकी जैसी कर्म की वासना है, उती अर्थ कर्म वासना, उती का दूसरा शब्द है कर्म वासना। अब देखो ये सर्दियों में ना माता जी कभी कभी बनाते हैं ना छोटे से ऊन लेके स्वेटर बना दिया, बच्चे का स्वेटर छोटा बना दिया, लड्डू गोपाल का उससे छोटा बना दिया। हमारा स्वेटर बनाना हो तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ तो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जैसा जिसका शरीर आकृति उसे वैसे उसका कपड़े बनता है ना, ऐसे जिस आत्मा का जैसा कर्म वैसा उसका शरीर बनता है। तो उति का मतलब है कर्म वासना, जिसके अंतर्गत देवताओं का शरीर मिलता है सतोगुणी, असुरों का शरीर मिलता है तमोगुणी, रजोगुणी, मानव का शरीर मिलता है। इसके बाद है मनवंतर। मनवंतर का अर्थ है भगवान का शासन और संचालन। जब सृष्टि करेगी तो उसको शासन भी चलाना चाहिए ना, तो उसको शासन कैसे करते हैं? तो मनवंतर, मनवंतर का लाला के लिए दूसरा शब्द है सद्धर्म। हर एक मनु कोई धर्म चलाता है, वो सद्धर्म के ऊपर चलने से वासनाएं शुद्ध होती हैं। तो मनवंतर क्या है ये आपको बता दें, ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प। एक कल्प उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन चलता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का शासन चलता है। एक मनु के शासन के समय एक भगवान का अवतार होता है, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। वो भगवान 7 ऋषि चुनते हैं, जिसको कहते हैं सप्त ऋषि, जो धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। वो भगवान एक योग्य व्यक्ति को इंद्र चुनता है, जो उस मनवंतर का इंद्र बनता है। और जैसे ये मनवंतर का टाइम पूरा हुआ तो दूसरा मनवंतर आएगा, तो दूसरा इंद्र बनेगा, दूसरे 7 ऋषि बनेंगे, दूसरा अवतार आएगा। आज अभी इस वक्त 7वां मनवंतर चल रहा है, ब्रह्मा जी का दोपहर हुआ है। एक दिन का दोपहर हुआ है, एक मनवंतर में 71 बार चार युग बदलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, 71 बार बदलते हैं। इतना समय एक मनु का शासन होता है और मनु सधर्म चलाता है, तो इस वक्त सातवां मनु शासन कर रहा है, इसका नाम है विवस्वत मनु। इसका नाम है सूर्यदेव का पुत्र विवस्वत, इस वक्त मनु है। इस वक्त इंद्र है पुरंदर, पुरंदर नाम का इंद्र है, सप्त ऋषि है उनका भी नाम लिखा है। तो ये मनमंत्र में सद्धर्म स्थापना होती है। इसके बाद है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके अनुगामी भक्त, उनकी कथा। ये सुनने से क्या होगा? बोला हृदय के अंदर जो कर्म की वासना है वो सब भुन के खत्म हो जाएंगे। भगवान और भगवान की कथा सुनेंगे तो हृदय पवित्र हो जाएगा, तो हमारे जीवन में मुक्ति का रास्ता खुलेगा। इसके बाद आता है मुक्ति। एक मुक्ति होती है सामान्य मुक्ति लोगों की, एक मुक्ति होती है 24 तत्वों की मुक्ति, जिसको संसार बना हुआ है। ये 11वें स्कंद में मुक्ति का विषय है। निरोध का मतलब है प्रलय, सब कुछ समाप्त हो जाए। चार प्रकार की प्रलय होती है। एक रात को सो जाते हैं प्रलय, हमारे लिए दुनिया नहीं रहती, किसी का याद नहीं है, सब रात रात सो गए मरे के बराबर, प्रलय हो गई। हम रात को सोते हैं वो प्रलय, ब्रह्मा जी की रात होती है वो प्रलय, तब तो सब समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, महाप्रलय होती है, सब कुछ ब्रह्मा जी समेत सब कुछ समाप्त। ब्रह्मा जी की रात की प्रलय केवल भूलोक, भोर लोक और स्वर लोक की होती है, स्वर्ग लोक तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ऊपर के लोग जैसे के जैसे रहते हैं, केवल तीनों लोकों की होती है बस। और एक है आत्यंतिक प्रलय, हमेशा दुनिया से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाए। ये 9 विषय समझना काय के लिए, 10वें विषय को आश्रय, भगवान का शरण लेने के लिए। और आश्रय है असल में 10वां स्कंद पूरा भागवत का, जिसमें भगवान की 90 अध्यायों में अद्भुत लीलाएं हैं। 90 अध्याय सबसे ज्यादा बड़ा 10वां स्कंद और सबसे छोटा 2रा स्कंद। अब यहां 2रा स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। 30वें स्कंद में स्वर्ग का वर्णन है और 33 अध्याय है इसमें। 3रे स्कंद में 33 अध्याय है, स्वर्ग का वर्णन है। 2 भगवान के अवतार हैं इसके अंदर, उनकी लीला है। 2 प्रकार की सृष्टि है, 2 भक्तों का मिलन है। 3रे स्कंद में ये सामान है। 2 भक्तों का मिलन है, आरंभ होता है विदुर और उद्धव का मिलन। विदुर की कथा आपको कल बताई थी, और उद्धव भगवान का महान भक्त है। उद्धव यदुवंशी है, लेकिन उद्धव को भगवान ने संसार में अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ के गए। आज भी उद्धव बद्री का आश्रम में नर नारायण का प्रतिनिधि आज भी है। उद्धव अभी है धरती पे, बद्री का आश्रम में बैठा है। आप जाएंगे आपको कहेंगे देखो उद्धव बैठा है नर नारायण के पास, और बाहर उसी को ले जाते हैं उस उत्सव की मूर्ति के रूप में। और दूसरा उद्धव रहता है वृंदावन में, गोवर्धन में। तो उद्धव भी यदुवंशी था, उसका नाश क्यों नहीं हुआ? सब यदुवंशियों को शराप था, ऋषियों ने भी शराप दिया था, गंधारी ने भी शराप दिया था। तो क्या ये यदुवंशी शराप से मरे थे? नहीं, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से। अगर मारना होता, नहीं मारना था भगवान को, तो उद्धव को जीवित रखा। भगवान का भाई है, यदुवंशी है, भगवान के चाचा का लड़का है, भगवान जीवित रखा। वो छोटा बच्चा था 5 साल का, तो कृष्ण की मूर्ति की से प्रेम करके साथ सोता था और हमेशा कृष्ण के साथ रहा उद्धव, हर समय हर जगह साथ रहा, मंत्री था कृष्ण का। एक ही व्यक्ति को भगवान ने चुना गोपियों को संदेश देने के लिए, उद्धव को चुना। और भगवान ने कहा उद्धव एक रत्ती भर भी मुझसे कम नहीं है, उद्धव मेरे समान है। उद्धव भगवान का उत्सव की मूर्ति है। असल में उद्धव का मतलब ही होता है उत्सव, जहां जाए वहां उत्सव हो जाए। तो उद्धव भगवान के आज्ञा से द्वारका से निकले और जमुना के किनारे विदुर से मिले, और दोनों के बीच में कृष्ण कथा उद्धव ने धारावाहिक कृष्ण की ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया, फिर द्वारका मथुरा और द्वारका की लीलाओं का वर्णन किया। ये जब दो भक्त मिलते हैं तो हरि कथा करते हैं और कोई उनका विषय नहीं है, इन दोनों के बीच में एक ही। और फिर उद्धव ने कहा भगवान ने इस धरती के धरती से जाने से पहले मेरे को भागवत का उपदेश दिया। तो विदुर ने कहा मुझे बताओ क्या भगवान ने कहा। उद्धव ने सोचा मैं छोटा और ये धर्मराज बड़ा है, मैं इसको उपदेश दूं ये मर्यादा का उल्लंघन है। और उस वक्त उद्धव ने कहा मेरे को जब श्री कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे उस वक्त मैत्रेय ऋषि वहां आए थे, और मेरे सामने भगवान ने मैत्रेय ऋषि को आदेश दिया कि विदुर को उपदेश देना। विदुर ने यह सुना, विदुर के आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान ने अंत समय मेरा नाम लेके याद किया था, भगवान ने मेरा नाम लेके याद किया और मुझे शिक्षा देने के लिए कहके गए हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जब भगवान की करुणा कृपा और ऐसी दया और रहमत को देखता है कभी कोई, तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं, वो आंसू उसके हृदय के मैल को धो देते हैं, उसका हृदय साफ हो जाता है। और फिर विदुर जी यहां से चले हैं हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के पास, और उद्धव यहां से चल के बद्रिकाश्रम गया। और विदुर ने इसके बाद तीसरे स्कंद में विदुर के प्रश्न है और मैत्रेय ऋषि के उत्तर है। यह विदुर मैत्रेय संवाद है। विदुर जी कहते हैं मैं व्यासदेव का पुत्र, मैंने महाभारत पढ़ी, मैंने सारे वेद पढ़े, मैं आपसे ये पूछता हूं कि सब लोग सुख को चाहते हैं, सब सुख के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं, सब दुखी है, कारण क्या? पहला प्रश्न ही ऐसा पूछा। प्राय हम सबसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आप सब लोग भी सुखी होना चाहते हो ना, हाँ, सबको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हमारा दूसरा प्रश्न ये, कैसा सुख चाहिए आप, कौन सा सुख चाहिए, कौन सा सुख चाहिए, संडे वाला, मंडे वाला, ट्यूसडे वाला, कौन सा चाहिए? हाँ,
सारे दिन, सारे हफ्ते, हर दिन का
सुख, वो सदा का सुख चाहिए। हाँ, कौन सा सुख चाहिए? बहुत अच्छा। किससे चाहिए? परिवार वालों से चाहिए, ग्राहकों से चाहिए, पड़ोसियों से चाहिए, किससे चाहिए? हाँ, किससे चाहिए, कब चाहिए, किससे चाहिए, कहाँ चाहिए, घर में चाहिए, बाजार में चाहिए, दुकान पे चाहिए, कहाँ चाहिए? आप अच्छी तरह से सोचो आपको सुख कैसा चाहिए। आप कहेंगे सब जगह चाहिए, सब समय चाहिए, सबसे चाहिए। ये सच ऐसे ही है कि नहीं? आप सब इसमें सहमत हो के चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सब समय है, सब जगह है, सब में है? आपका कोई रिश्तेदार है? आपका पैसा है? आपका घर सब जगह है? कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है? तो जो आप सुख चाहते हो वो भगवान के अलावा और कहीं से नहीं मिलेगा, ये आप पक्की बात कर लो। आप कहीं भी ढूंढो नहीं मिलेगा, क्योंकि है आपको चाहिए नहीं। आपको संडे वाला चाहिए तो मिल जाएगा, आपको घर वाला चाहिए तो मिल जाएगा, आपको किसी एक व्यक्ति से, लेकिन आप कहते तो सब जगह चाहिए, सब समय चाहिए, आप कहो, आपने बोला, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। तो आपके अंदर में जो सुख की जिज्ञासा है वो केवल भगवान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। गुरबाणी में बहुत अच्छा चल, सुख का दाता राम है दूसर ना ही कोई, सुख को देने वाला राम है और कोई है और नहीं है। राम शब्द का अर्थ है आनंद। राम शब्द निकला है रमण का से, संस्कृत में रमण का कहते हैं खिलौनों को। खिलौने हाथ में आ जाए तो आदमी को दुनिया भूल जाती है, ऐसे भगवान हाथ में आ जाए तो दुनिया भूल जाती है। ये राम का मतलब है रमण का, खेलो खिलौना। तो सुख का दाता राम है, दूसर नहीं कोई और नहीं है। सो फिर पूछते हैं सृष्टि कैसे हुई, तो सृष्टि दो प्रकार की होती है, असुरी और देवताई। असुरी सृष्टि का प्रमाण है हिरणाकश और हिरणाकशिपु। ये कौन है? दो असुर। किसके पुत्र हैं? कश्यप और दित्ति। किसके? दित्ति शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करने वाली, छिन्न भिन्न करने वाली, और आदित्य का अर्थ है जोड़ के रखने वाली, साथ में मिला के रखने वाली। दित्ति और कश्यप, इनकी संतान हुई असुर। कैसे असुर पैदा होते हैं? कश्यप जी यज्ञ करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए शाम के समय पूजा में बैठे थे। दित्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कश्यप को उस वक्त काम के प्रचुर प्रकोप से कहने लगी, मुझे संतान चाहिए। कश्यप ने कहा समय ठीक नहीं है, संध्या काल है, शंकर जी इस वक्त भूत प्रेतों को लेकर घूमते हैं और जो सहवास करते हैं उनकी संतान भूत प्रेत होती है। मैं पति हूं कह रहा हूं आपको संतान मिलेगा, लेकिन इस वक्त आग्रह मत करो। लेकिन दित्ति ने बहुत जिद किया। कश्यप जी ने कहा भगवान की इच्छा होगी। तो जो अपनी इच्छा से काम के प्रबल वश में होकर संध्या काल का ध्यान न रखते हुए देवता शंकर का अनादर करता है, उसके उदर में असुर प्रवृत्ति का बच्चा जन्म लेता है। स्वेच्छा संध्या काल का ध्यान, संध्या काल में हमारे वेद में लिखा है सोना भी नहीं चाहिए, ऐसे सोना भी नहीं चाहिए, और धर्म की नीति मर्यादा है। ये संध्या का मतलब, संध्या का मतलब क्या है असल में? संध्या का मतलब है दो समय को जोड़ने वाला, एक को कहते हैं प्रातः काल संध्या। तारे चले गए हैं, सूर्य नहीं उगा है, तारे नहीं है आकाश में, लेकिन सूर्य उगने में देर है, जो बीच वाला टाइम है इसको कहते हैं संध्या, ये प्रातः काल संध्या। शाम की संध्या का मतलब सूर्य अस्त हो गया, तारे नहीं निकले, जो बीच का समय ये सतोगुणी समय होता है, ये बहुत सतोगुणी शांत समय होता है। और मध्यान्ह काल की संध्या है दोपहर को 12 बजे, इसको बोलते हैं त्रिकाल संध्या। ये तीन समय संध्या के हैं, और संध्या का दूसरा अर्थ है संध्या लगाना, जोड़ना। ये वो अच्छा समय है जिस वक्त आप अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं, ये भगवान से अपने आप को मिलाने का, जोड़ने का सबसे उत्तम समय है। इसलिए जो अपने पास मंत्र गायत्री आदि जप करते हैं वो संध्या के समय करते हैं, सुबह दोपहर और शाम, उसका अपना टाइम फिक्स है, हर समय हर जगह करने का उसका नियम नहीं। तो असुरी ऐसे, और थोड़ी देर के बाद दित्ति, कश्यप जी ने आके फिर स्नान किया, यज्ञ में बैठे, तो दित्ति ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत काम किया, खुद ने अपनी गलती को माना, मुझे क्षमा करो पतिदेव। कश्यप कहते हैं पहले दो असुर तुम्हारे उदर में आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये संसार में त्राही त्राही कर देंगे, गौ की, ब्राह्मण की, देव की, सबकी अवहेलना करेंगे, निंदा करेंगे, विनाश फैला देंगे। इनको मारने के लिए भगवान साक्षात अवतार लेगा। दिति कहती है अच्छा है, किसी ब्राह्मण के शराब से तो नहीं मरेंगे, भगवान आएगा तो उद्धार ही होगा। शंकर जी को मैं मना लूंगी, वो तो मेरा बहनो ही है। दिति ने क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दो, तो कश्यप ने कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम अब गलती अपनी मान रही हो तो तेरा पोता ऐसा महान भागवत पुरुष होगा, जब भक्तों का नाम गिनाया जाएगा तो तेरे पोते का नाम पहले नंबर पे लिया जाएगा, प्रहलाद तुम्हारा पोता होगा। इससे ये सीखना चाहिए, गलती इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती माने तो बहुत बड़ा प्रसाद मिलता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। गलती मानने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब देवी प्रकृति का कौन सा संतान है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की पहले मन से, बच्चे पैदा हो जाओ और चार बच्चे पैदा होगा, एक भी नहीं, चारों को कहा तुम विवाह कर, तुम संसार बढ़ाओ। बोला हमको संसार नहीं बढ़ाना, हम साधु हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बेटे आज्ञा नहीं पालन कर रहे। ब्रह्मा जी के माथे से एक बालक नीचे गिरा और रोने लगा और नीले रंग का था। कहा मेरा नाम क्या है? बोला तुम रो रहे, तेरा नाम रुद्र, तुम 11 रूपों में रहोगे, तेरी 11 रुद्राणी पत्नी होंगी, जाओ सृष्टि करो। और रुद्र ने भूत प्रेत पैदा किए जो ब्रह्मा जी को खाने आए। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, न चाहिए सृष्टि तुम्हारी, तुम प्रलय का काम ही करना। ये जब मैं पढ़ता हूं तब मुझे लगता है आजकल के लोगों ने भी भूत प्रेत ऐसे पैदा किए, तब के कहा कि जरूरत नहीं है, एक ही बहुत है। ऐसे भूत प्रेत कितने पैदा करेंगे। शंकर जी को रुद्र को कहा तुम्हारी सृष्टि की जरूरत नहीं है। फिर 7 ऋषि पैदा किए, सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, तो पहली बार ब्रह्मा जी ने अपने सीधे हाथ की तरफ से स्वयं वो मनु को पैदा किया, पहला व्यक्ति जिसके नाम से हमको मानव कहते हैं, मनु। और अपने वाम भाग से एक स्त्री पहली बार पैदा हुई, शर्त रूपा। यह है देवी संपत्ति का पहला जोड़ा। इन दोनों के विवाह से 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। पहली इस धरती के ऊपर पुत्रियां 3 थी और पुत्र 2 थे। ये पहली गणना है, जनगणना पहली धरती की है। एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत, और 3 पुत्रियों के नाम थे देवहूति, आकुति, प्रसूति। ये है देवी संपदा। इसमें से देवहूति माता को 1 पुत्र और 9 कन्या है, ये दूसरा जनगणना। 9 बेटियां, 1 बेटा, और उन 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से हुआ जिनके हम संतान हैं। बेटियों से संसार बढ़ा, बेटों से नहीं बढ़ा। 1 पुत्र कपिल देव। अब भगवान के 2 अवतार कौन से हैं ये सुन लो। 1 भगवान का अवतार वाराहदेव क्रिया प्रदान, और दूसरा भगवान का अवतार कपिल देव ज्ञान प्रदान। तो वाराहदेव कैसे प्रकट हुए? जब कहा ऋषियों को कि सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा धरती नहीं है महाराज, सृष्टि कहां करें ब्रह्मा जी, धरती तो गर्भ सागर में चली गई। ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि धरती कैसे वापस ऊपर आए। उस वक्त ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा जीव नीचे गिरा और सबसे देखते देखते वो वाराह रूप प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया कि ये वाराह देव है। अब ब्रह्मा जी की नासिका से हुए लेकिन है तो भगवान ना, ब्रह्मा जी उसको प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं हमारे को, भाई देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, जैसे शिवरात्रि कल है ना, तो शंकर जी का वो दिन है, पूजा करनी चाहिए। वैसे भगवान की पूजा तो रोज करते हैं, ठीक है। जैसे हमको किसी ने पूछा, उन्होंने बोला बेटे की जब शादी होती है तो बेटा घोड़ी के ऊपर चढ़ा होता है, बाप पैदल चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा बड़ा है। बाप नीचे भी चले तो बाप तो बड़ा ही होगा ना, घोड़ी पे भले बेटा हो, तो जिस दिन उसकी शादी है उस दिन वो ऊपर चढ़ता है, लेकिन हमेशा तो बाप ही बड़ा रहेगा ना। तो भगवान तो सदा ही है, लेकिन सबको अपने समय के ऊपर पूजा करके आदर देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संसार की कोई चीज मांगने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। उस वक्त वाराहदेव पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालने के लिए चले गए, और उस वक्त हिरण्याकश सब देवताओं से लड़ता हुआ वरुण देव के पास गया। वरुण देव ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, लड़ाई नहीं करूंगा, तुम्हारा ये घमंड चूर करेगा भगवान विष्णु। बोला है कहां जाके? बोला ढूंढ निकालो। तो नारद जी ने सामने आया, बोला कश्यप के पुत्र कहां जा रहे हो? बोला विष्णु कहां है? बोला वो देखो पृथ्वी लेके जा रहा है, ये है वारा। तो पीछे से हिरण्याकश ने चिल्ला के कहां ले जा रहे हो? पृथ्वी हमारी है, असुरों की है। वाराहदेव चुपचाप पृथ्वी को लाए, अपनी ऑर्बिट में स्थापित किया, जो रख के फिर मुड़ के काए कुत्ते, हम जंगली सुअर हैं, तुम जैसे कुत्तों को ढूंढ रहे हैं। और फिर दोनों के बीच में भारी युद्ध हुआ। उस भारी युद्ध में शाम हो गई, ब्रह्मा जी की शाम हो गई। कितना समय लगा होगा? ब्रह्मा जी ने कहा शाम हो गई महाराज, भगवान इससे खिलवाड़ मत करो, शाम को असुरों का बल बढ़ जाता है, इसका आप उद्धार करो। तो वाराहदेव ने एक मुक्का दे मारा हिरण्याकश को, हिरण्याकश के प्राण निकल गए। बहुत लंबा इनका युद्ध हुआ है। और हिरण्याकश या वाराहदेव का जयकार हुई, और ये 19 अध्याय पूरे होते हैं ऐसे। फिर कर्दम मुनि और देवहूति के विवाह का वर्णन है। इस विवाह का वर्णन करें कि आगे चलें? समय तो हो गया मेरे ख्याल में, मेरा अंदाजा लगाया। कर्दम और विवाह, देवहूति का विवाह, उसके बाद कपिल देव का प्रकट्य और कपिल देव की देवहूति को शिक्षाएं। ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि प्रभुपाद जी ने एक तो कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर पूरा पुस्तक लिखा है, और दूसरा कपिल देव की शिक्षाएं देवहूति को। ये भागवत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी शिक्षाएं। एक नारी ने, एक स्त्री ने सांख्या दर्शन को भगवान के मुख से सुना है। तो नारी भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, इसका उदाहरण देवहूति है। और देवहूति शब्द का अर्थ है देव का जो आवाहन कर सके, देव को पुत्र के रूप में, अपने आप भगवान को पुत्र के रूप में जिसका सामर्थ हो, देव आहूति, देव का आवाहन करे। आवाहन शब्द और निमंत्रण शब्द में अर्थ ये है, निमंत्रण दो कोई आए ना आए उसकी मर्जी, लेकिन आवाहन करो तो उसको आना ही पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकता। तो देव आहूति, जो देव को भी अपने इच्छा से पुत्र के रूप में प्रकट कर सके, ऐसी माता देवहूति। कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे सरस्वती नदी के किनारे पे, और ये जगह आज है गुजरात में सिद्धपुर में, सिद्धपुर में वो जगह है। और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान साक्षात विष्णु उनको दर्शन देने आए, और उनकी तपस्या देख के उनके आंखों से दो आंसू गिरे, जिससे एक सरोवर बना, उसका नाम है बिंदु सरोवर। और आज भी बिंदु सरोवर वहीं सिद्धपुर में है। और वहां कर्दम मुनि के पास स्वयं भू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर कन्यादान करने के लिए आए। वहां आज भी कर्दम और देवहूति का मंदिर है, कपिल देव अपनी माँ देवहूति को शिक्षा देती है, वो स्थान है। और उस तीर्थ को आज कहते हैं मातृ गया, माताओं की सदगति के लिए लोग वहां जाके तर्पण करते, क्योंकि भगवान कपिल देव ने अपनी माता को मुक्त कर दिया दिव्य ज्ञान देकर। तो उस विवाह में देवहूति सेवा में लगी रही, भोग में नहीं लगी, और तपस्या में कर्दम लगे रहे। एक दिन कर्दम ने कहा कि मनु पुत्री तुम्हारी इच्छा क्या है? बोला आपने मेरे पिताजी को कहा था कि आप संतान उत्पन्न करेंगे। तो समझ गया कर्दम मुनि, उन्होंने एक बहुत बड़ा विमान तैयार किया जो आकाश में उड़ सकता है, उसमें बड़े उद्यान, बहुत सुंदर ऐसा उसका वर्णन है। लेकिन देवहूति का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था, मन समझ गया कर्दम के बिचारी तपस्या करके दुर्बल हो गई है। बोला बिंदु सरोवर में स्नान करो, और बिंदु सरोवर में जैसे स्नान करने के लिए गई, विद्याधर स्त्रियां आके उसको तेल लगा के, उपटन लगा के बहुत सुंदर श्रृंगार किया, वो फिर राजकुमारी होके बाहर निकली, और उस विमान में उस विद्याधर कन्याओं के साथ नंदन कानन आदि स्वर्ग के लोगों का भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करने के बाद करदम एक से नौ हो गए, और नौ पुत्रियां तत्काल उसको उत्पन्न हुई और कहा अब मैं जा रहा हूं संन्यास लेके। अरे करदम जी आप जाओगे पतिदेव, पुत्रियां अपने पतियों के घर जाएंगी तो मेरा कौन देखभाल करेगा। तब करदम को याद आया भगवान ने कहा था मैं तेरे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा, और तब कपिल देव का प्रकट्य हुआ। ब्रह्मा जी आए, ऋषियों को साथ लाए और कहा कि ये अपनी नौ कन्याएं इन ऋषियों के साथ नाम लेके कहा देवहूति का विवाह तो आपने कर दिया है, ये अरुंधति का वशिष्ठ के साथ विवाह कर दो। ऐसे एक एक का नाम लेके कौन से ऋषि के साथ विवाह करना है वो कह दिया, और फिर कपिल देव का प्रकट्य हुआ। करदम जी कपिल देव को प्रणाम करके परिक्रमा करके उत्तर दिशा में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन देवहूति कहती है इतना बड़ा योगी मुझे पति मिला, समर्थ पति मिला, लेकिन मैं संसार के भोगों की कामना की, अब बेटा सबके भले के लिए मुझे आप उपदेश दीजिए। करदम प्रसन्न हो गया कि माँ सबका भला चाहती है। फिर करदम मुनि तब कपिल देव ने माता देवहूति को सांख्या दर्शन भक्ति युक्त, और माता ने कहा काल का प्रभाव क्या है, भक्ति किस प्रकार की होती है, और बच्चे का जन्म कैसे होता है, पूरी गर्भ गीता कपिल देव ने माता देवहूति को सुनाई कि बच्चा कैसे माँ के गर्भ में आता है, और बच्चे को कैसे भगवान का दर्शन हृदय में होता है, और बच्चा भगवान को प्रार्थ वो जीव भगवान को प्रार्थना करता है भगवान मुझे यहां से निकालो मैं आपको याद करूंगा, वो अपना वचन भूल जाता है जन्म लेते ही। ये बहुत बड़ी सुंदर कथा है। और इसके बाद तीसरे स्कंद में देवहूति और करदम मुनि के एक केवल एक अध्याय 25वें के ऊपर प्रभुपाद जी के धारावाहिक प्रवचनों का एक पुस्तक है, सब माताओं को पढ़ना चाहिए, माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन शिक्षाओं का नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। चौथे स्कंद में विसर्ग 31 अध्यायों का है, इसमें चार विभाग हैं, आज विभाग करते हैं काल कथा करेंगे, और फिर बाकी कुछ कथाओं को प्रणाम करके कल पांचवा दिन है, कल शाम को कृष्ण जन्म करना पड़ेगा नहीं तो काम बनेगा नहीं। हरे कृष्णा। तो चौथे स्कंद के चार विभागों के नाम सुन लो। पहले 7 अध्यायों में यज्ञ के रूप में धर्म का पालन कर रहे थे, दक्ष यज्ञ का वर्णन है। 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त कुद्रु महाराज का चरित्र है। 11 अध्यायों में सबकी इच्छा पूरी करने वाले पृथु महाराज का चरित्र है, और 8 अध्यायों में मुक्ति के पथ पे चलने वाले प्राचीन बरहित और परचेताओं को नारद का पुरंजन उपख्यान का वर्णन है। ऐसे 31 अध्याय पूरे होते हैं। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं, कल शिवरात्रि है, कल शिव वो भोलेनाथ की शिक्षाओं से ही कथा को आरंभ करेंगे। पहले 7 अध्यायों में दक्ष यज्ञ की कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।